50% of all the rapists are politicians themselves.
Oh, is this stat true? Like you have
check out the rates. The first reason why doing business in India is terrible is because we've created a perfect system where the courts do not function. The biggest privilege a man gets in India is the ability to postpone cases. The government floods the cases, courts with cases, so that they can extort money. Gautam Adani is the only industrialist in India jahan 50-50 ki baat karte hain.
Ab Adani Group kitna bada hai?
Kafi bada hai.
Gautam Adani, kuch hi saal mein wo Ambani se bada ban gaya, Birla se bada ban gaya, Mittal se bada ban gaya. All of a sudden ye hua kya? To humne socha ki yaar, इस जर्नी के बारे में तो पता लगाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा कि व्हाट वर द स्ट्रेटजीज जो गौतम अदानी ने अपनी लाइफ में यूज करी जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए. क्या ये एक पॉलिटिक्स की वजह से था? क्या ये उनके बिजनेस एक्यूमेन की वजह से? क्या ये राइट टाइमिंग की वजह से था? क्या ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से था? किस वजह से था? इसीलिए वी हैव कॉल्ड आर्यन भास्कर, जिन्होंने गौतम अदानी के ऊपर 18 साल से रिसर्च किया और उनके ऊपर बुक भी लिखी और काफी टाइम उनसे मिले भी हैं, टू अंडरस्टैंड हिम एंड हिज बिजनेस एक्यूमेन इन डीपर सेंस. आज का एपिसोड ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पहली बार किसी बिजनेसमैन के बारे में एकदम डीप में स्टोरी के वे में समझा है कि उन्होंने फर्स्ट बिजनेस कितने रुपए में कब स्टार्ट किया था, कौन कौन से बिजनेसेस उसके बाद करते चले गए जिसकी वजह से आज वो बिलियन डॉलर की एम्पायर पे खड़े हैं. मेक श्योर यू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड विथ अ गेस्ट विच आई फील इज गोना कम बैक अगेन एंड अगेन ऑन फिगरिंग आउट विथ आर्यन भास्कर द स्टोरी एंड लाइफ सक्सेस ऑफ गौतम अदानी. Enjoy the show.
ते आप बता रहे थे कि अदानी का स्टार्ट कैसे हुआ? पहले वो डायमंड मर्चेंट था.
अदानी सौदागर है.
ओके.
उसे सौदा करना जानता, वो सौदा करना जानता है. और दुनिया में अगर देखोगे सबसे बड़े इंडस्ट्रीज अधिकतर सौदागर रहते. सौदागर क्या करता है? उसका मालूम है किस प्राइस पर खरीदना है और किस प्राइस पर बेचना है, कितनी जल्दी बेच सके, जितनी जल्दी बेच सके उसका वो जो बर्डन है, उसका जो भार है
वो खत्म हो जाए. और ये सीखा उन्होंने स्टार्टिंग में डायमंड बिजनेस से.
खाली एक सौदागर शॉर्ट टर्म सोचता है, इंडस्ट्रियलिस्ट लॉन्ग टर्म सोचता है. कहीं ना कहीं बीच में अडानी ने सीखा किस तरीके शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म कर सके. बहुत लोग नहीं करते हैं. बहुत लोग सौदागरी सौदा ही करते रहते हैं और बड़े नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं. टू बी एन इंडस्ट्रियलिस्ट थिंक लॉन्ग टर्म, एक साल के लिए, एक महीने के लिए, एक छह हफ्ते के लिए नहीं, सौदे के लिए नहीं, पर कंटिन्यूस कैश फ्लो के लिए. इंडस्ट्री में कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, सौदे में ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है.
तो ट्रांजैक्शन लॉन्ग टर्म तक कैसे चलता रहे, दैट इज व्हाट इज अदानी.
वो लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन के कैश फ्लो बन जाता है. उसके लिए प्रोडक्शन भी है, परचेस है, सेल है, पूरा चेन एंड टू एंड चेन रहता है. वो बहुत सौदागर नहीं कर सकते. तो उसने शुरुआत की थी हीरो में. हीरो में वो व्यापार करता था. अब हीरा एक ऐसी चीज है जहां माल खरीदा जाता है, जो रफ स्टोन्स कहते हैं, एक देश से खरीदा जाता है, फिर दूसरी देश में जाता है, वहां स्वॉप होता है कि मुझे खाली वो हीरा मिले जिसे मैं जल्दी बेच सकूं. क्योंकि हीरे की भी कई क्वालिटीज रहते हैं, कई साइजेस रहते हैं. तो हर एक जो मर्चेंट रहता है वो जो साइजेस उसको बेचना बहुत रिस्की रहता है, वो किसी और को दे देता है,
सॉर्ट कर देता है.
सॉर्टिंग होता है. अधिकतर सब सॉर्टिंग एंटवर्प या दुबई में होता है.
ठीक है.
कभी कभी अमेरिका में होता है. जो भी इंडियन कट करता है वो इंडिया में आता है एंड द कट एंड पॉलिश इन सूरत. पर सूरत की कामयाबी ऐसी हो गई है, इतना कुशल हो गए अपने काम में कि दुनिया में 10 पत्थर में से 9 पत्थर सूरत में कटते हैं आज.
वाह.
अभी जब उधर से कटिंग पॉलिशिंग के बाद डायमंड व्यापारी के पास आता है तो व्यापारी देखता है, उसे मालूम है कि जितने दिन उसके पास ये डायमंड रहा उतना ब्याज जाएगा. फॉरेन करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का रिस्क रहता है. तो आप देखोगे जहां भी डायमंड बोर्ड से अपना अभी बीकेस में पहले होते तो अपरा हाउस में पंचोत्तम बिल्डिंग के बाहर प्रसाद चेंबर्स, वहां सौदागर मिलते थे गली के बाहर, ये देखना है ये मेरे पास है, वो अलग अलग क्वालिटी मिक्स करके देते थे तुम्हें, देखो इसका भाव ये है, इस क्वालिटी का भाव ये है और आपको खरीदना है, आपके पास कोई कस्टमर है जिसको आप सोचते हैं कि ये बेच सकूंगा, तो व्यापार होता है जमानी, आप लेते हो माल हो गया, कुछ लिखत में नहीं रहता था और सौदा होता था, 24 घंटे में आपका पैसा आ जाता था। ये ट्रेड पूरी जमानी रहती है। और गौतम भाई उस ट्रेड में गए, पूरा टाइम रस्ते पर घूमते घूमते सॉर्टिंग करते, अपने पैकेजेस लेकर दिखाते थे, कभी कभी मर्चेंट्स की दुकान में जाते थे तो ये मेरे पास माल आया है इतना मैं दे सकता हूं, और उसी से करते थे। एक बार उसमें हिम्मत आ गई, जोश आ गया, तो किसी को बड़ा सौदा कर दिया और उसके बाद छुट्टी के लिए चला गया। उसका भाई मामा का भाई लड़का था, तो वो आया, उसने देखा जो मंडे को आया तो देखा कि स्टॉक में से इतने डायमंड मिसिंग है, बुक्स में देखा उतने पैसे नहीं आए थे और कुछ नोट नहीं था कहाँ गए हैं वो डायमंड्स। तो दो तीन दिन बेचैन रहे, गौतम आया तो बोला हाँ मैंने उसको बेचा हूँ, पर उससे पैसे नहीं दिया, उसने प्रॉमिस किया अगले दिन देगा, ट्रेड में सब जबानी चलता था। पर गौतम ने ज्यादा दिया और उसके पीछे किसी को बताना चाहिए था, गौतम ने दिया तो सब घबरा गए। तो उसके भाई और ये तीनों ने एक प्लान रचा, आदमी मार्केट में नहीं आ रहा था, फोन नहीं उठा रहा था, तो उसके घर पर गए, उनको मालूम था दूध वाला 6 बजे आता है, पहले चेक करके मालूम पड़ा हर सवेरे 6 बजे दूध वाला पड़ता है, तो 6:05 पर वो जाकर घंटी बजाए, तो डायमंड मर्चेंट की वाइफ आई बाहर, तो देखिए ये छोटे लड़के में खड़े थे, बोले देखो भाभी ये लेकर गए हैं माल, उनसे मिलना है, जाने वाले नहीं है। तो उसके घर में मिले उसे, बोला नहीं मेरे बुरे दिन आ गए, मैं पैसे पे नहीं है मेरे पास। बोला क्या है तुम्हारे पास? तो बोला नहीं कुछ नहीं है, पर कुछ तो कुछ होगा ना, घर में दिखाओ क्या क्या है। तो उसके पास और पत्थर थे, तो उस पत्थर थोड़ा पत्थर से आधा सौदा हुआ, आधा सौदा पैसे से हुआ और आधा पैसा अब थोड़ा पैसा बाद में देगा उसकी उस जबान पर, वो लेकर अपना जो लॉसेस थे वसूल कर दिए। उसके बाद उसे मालूम पड़ा कि कभी पूरी जबान पर ध्यान देना चाहिए, रिस्क मिटिगेशन होना चाहिए। और डायमंड में अच्छी तरह काम किया, बहुत पैसे बने उधर,
और 5 देशों में यूएसए की उसने वो सीखा ट्रेड जो सीखा, दैट वाज 5 कंट्री से सीखा।
और आपको हमेशा कैलकुलेशन करना चाहिए, इस कंट्री का डॉलर इतना है, इस कंट्री का करेंसी इतना है, इस कंट्री में ब्याज इतना है, इतना वेटिंग पीरियड इतना ब्याज होगा, इस कंट्री का मैं 6 महीने के लिए मैन्युफैक्चर होगा, इस कंट्री का ब्याज इतना है, इतना रुपया रुपया वीक हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, वो सब ध्यान रखना है, क्योंकि इन प्राइस जो बेचोगे वो सब का जो जो भी हिसाब किया उसका नतीजा इसमें इन प्राइस में होगा, और जितनी देर आपके जेब में रहेगा उतनी देर आपके जेब को जलाएगा।
तो जल्दी से लेके जल्दी
बेचो, सौदा नक्की करो जल्दी, एक पैसा प्रॉफिट है चलेगा, एक रुपया बहुत अच्छा।
और इसके मास्टर हो गया था गौतम अदानी,
वो मास्टर किया, फिर उसके भाई ने बुलाया अहमदाबाद में प्लास्टिक ट्रेडिंग में, और प्लास्टिक ट्रेड में गया, उधर भी छोटे माल से बड़े माल तक पहुंचा, कोरियर से रिश्ता कराया।
गौतम अदानी है, प्लास्टिक करते थे, प्लास्टिक पे जाके वो किससे मिले थे? जयेश भाई से।
जय भाई,
हाँ जय भाई, क्या था स्टोरी ये मुझे बताओ।
देखो भाई, गौतम भाई प्लास्टिक ट्रेडर थे, उस समय वो 5 टन इंपोर्ट करते थे, कंसाइनमेंट साइज 5 टन थी, कभी 2 टन कभी 5 टन तक गए। उसे मालूम था कि अगर उसे बड़ा होना है तो उसे सोर्स मटेरियल कम दाम में मिलना चाहिए। मार्केट प्राइस आप बदल नहीं सकते हो, एक बार आपको फेवर कर सकता है कस्टमर, जो उससे ज्यादा नहीं कर सकेगा, तो आपका मार्केट प्राइस दूसरे लोगों से कम रहना चाहिए, कम रहना चाहिए तो आपको सोर्स मटेरियल कम रहना चाहिए। सोर्स मटेरियल कहाँ से आ रहा है? कोई ट्रेडर बताने के लिए तैयार नहीं है। तो गौतम भाई सोच में पड़ेगा और दूसरे लोगों से पूछने लगा। उसके व्यापारी जो बोलते हैं अपना काम नहीं है भाई, तू सौदा कर या रिसर्च मत कर या। तो गौतम मानता नहीं था, वो सबको देख रहा है, देखने लगा। उसको फिर प्लास्टिक बैग जो मिली जिसमें मटेरियल आता था, बैग में देखा एक छोटा सा लोगो कहीं पड़ा था, हर एक बैग को देखा, हर एक बैग में वही लोगो था। तो उसका रिसर्च चालू हुआ उस लोगो पर, कौन कहाँ से आ रहा है। फिर मालूम पड़ा है लोगो कोरिया से आ रहा है, साउथ कोरिया से। तो बोला अच्छा, तो माल साउथ कोरिया से आ रहा है, अब साउथ कोरिया कौन से ट्रेडर है? अपने कस्टम्स के दोस्तों से पूछा, देखो भाई साउथ कोरिया कौन कौन ट्रेडर है। साउथ कोरिया से केमिकल्स आते थे, इंजीनियरिंग गुड्स आते थे और डायमंड्स और प्लास्टिक आते थे। तो प्लास्टिक कौन कौन लेता है? उसको मालूम पड़ा जय भाई और एक और उसके दोस्त है, ये दो बंदे थे जो कोरिया से लाते थे। उनका एड्रेस खोज निकाला, उससे दोस्ती निभाने दोस्ती बनाने लगे, मिलते रहे, अरे भाई मैं 5 टन मुझे 20 टन कर लो, मुझे थोड़ा पैसा कम कर दो, कितना वॉल्यूम। बोले देखो भाई आपको कम पैसे में चाहिए, आपको 20 टन से ज्यादा करना चाहिए। तो 20 टन कैसे करें अभी, 2 टन से 20 टन करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसने एक तरकीब सोची, वो हर एक प्लास्टिक सप्लायर खरीदने वाले को, प्लास्टिक मटेरियल खरीदने वाले से संपर्क किया, प्रिंस प्लास्टिक्स, फिनोलेक्स, ये क्या कहते हैं, फिनोलेक्स, प्रिंस प्लास्टिक, फिनोलेक्स, IPCL, इन सब के पास गया, आपकी साल की क्वांटिटी कितनी है। कभी कभी कहते थे, कभी कभी धकेलते धकेल बोलते हाँ आप टाइम वेस्ट मत करो। पर एक बार मालूम पड़ गया कितना वॉल्यूम है, आप किन किन से खरीदते हो, बोले जो भी सस्ता में देता है। अच्छा लास्ट से कौन कौन सस्ते में दिए, ये ना कभी के ना मिल जाते थे। तो उसने बोला अच्छा एक चीज करो, इस साल में मैं आऊंगा आपके पास, आप मुझे बताओ कौन सबसे सस्ता, आपका क्या प्राइस आपको सबसे सस्ता मिलता है, मैं उस प्राइस को मैच करूंगा, फिर आपको मुझसे खरीदना पड़ेगा। बोले ठीक है, उसको अपना सोर्स नहीं बताना पड़ेगा, सप्लायर नहीं देना पड़ेगा। तो उसी आश्वासन पर उसने 20 टन इंपोर्ट किया, क्योंकि उसके इंपोर्ट वॉल्यूम बड़े थे और प्राइस भी अच्छा था। वापस गया प्रिंस प्लास्टिक, फिनोलेक्स और दूसरे के पास, बोला आपका सबसे अच्छा प्राइस क्या है। तो सच कहे झूठ कहे, बोले इस प्राइस में मिल रहा है। बोले मंजूर, मैं उस प्राइस में दूंगा। तो खरीदने वाला भी चौंक आ गया, कोई किसी ने उस प्राइस में दिया नहीं, तो पूरे साल का माल उसी प्राइस में दिया, वो भी इंस्टॉलमेंट में, जब उसको चाहिए उस समय देगा। क्योंकि नकी हो गया, शायद सौदा पक्का हो गया, कितना ब्याज आएगा वो सब कैलकुलेट कर लिया था। 20 टन तक पहुंचा, फिर जय और उसके दोस्त उसके उसे मिलने देते थे, और गौतम भाई हमेशा उसके साथ ट्रेन में जाते थे। हर वीकेंड पर वो लोग जाते थे बंबई से अहमदाबाद।
अच्छा,
बहुत गुजराती ऐसे करते हैं, वीकेंड पर बंबई में ट्रेन लेते हैं, रात की ट्रेन, रात को पकड़ते हैं ट्रेन, सवेरे अहमदाबाद पहुंचते हैं, जो भी काम है रिश्तेदार से मिलना है वहां संडे को रह जाते हैं, और मंडे को वापस आ जाते हैं। संडे रात को गाड़ी पकड़ के मंडे को बंबई में आ जाते हैं, जहाँ काम होता है, सब कुछ, सब काम कारोबार होता है। तो यहाँ आए, और गौतम भाई उन दोनों उनसे अच्छी दोस्ती दोस्ती बढ़ाने के लिए उनके साथ ट्रेन में जाते थे। पर गौतम भाई अमीर नहीं थे, वो सेकंड क्लास टिकट खरीदते थे, और ये दोनों बंदे फर्स्ट क्लास में जाते थे। फिर भी वो फर्स्ट क्लास में जाता था, उनसे बात करने का बहाना करता, TC आया तो बोलता था मैं वापस जा रहा हूँ, मैं खाली इनसे बात कर रहा हूँ। और रात आती थी तो दोनों कहते थे देख भाई तू या तो सेकंड क्लास में जाए या जमीन पर सो, तेरे पास टिकट नहीं है। तो दोनों के बीच में समीन जमीन पर सो जाता था, और जब भी उनके साथ बैठता था धंधे की बात करता था, प्लास्टिक की बात करता था, दूसरे देशों की बात करता था, कहाँ से क्या लेकर आते हैं वो देखता था, साथ साथ में देखता था क्या क्या खाते हैं, किस तरह का कांटा और चम्मच यूज करते हैं, कौन सा नैपकिन यूज करते हैं, शर्ट किस क्वालिटी का है, सब कुछ वो ध्यान देता था, क्योंकि उसे मालूम था कोई ना कोई दिन उसे भी यही यूज करना पड़ेगा, तो अभी से देखना पड़ेगा कैसे यूज करते हैं। उसका प्लान पहले से तैयार था। फिर ऐसी बम्बई अहमदाबाद में ट्रेन में जाने के बाद एक दिन उसने बोला मुझे कोरिया अपने साथ लेकर चलो।
कोरिया?
बोला तू कहाँ कोरिया जाएगा? बोला नहीं मुझे जा रहा है, भाड़ा में दूंगा, पर मुझे अपने साथ देकर चलो। तो बोले ठीक है, उसको कोरिया लेकर गए। गौतम इतना खुश हो गया, और अभी भी उसके पास अपने घर में वो वीसा का एक नया पिक्चर है, जो पहला वीसा था देश के बाहर पहली बार गया था। और वो गया कोरिया में, जब प्लेन से उतरा तो जय भाई मुझे कह रहे थे, वो जो ही उतरा तो जमीन पर अपना सर झुकाकर उसे चूमा, उसे मालूम था उसे पैसे यहां बनने वाले हैं। और वहां था, बात कर रहा था लोगों से, अपना निशान छोड़ने वाला था, छोड़ना चाहता था, तो सीधा 20 टन के मैंने 200 टन का ऑर्डर दे दिया। फिर घर में बोला मैंने 200 टन का ऑर्डर दिया, भाई चौंक गए, 200 टन कौन करेगा? तो उसने बोला मैं करूंगा। मेरे बैंक के पास गए LC खोलने, बैंक मैनेजर ने कहा मैं तुम्हारे LC का 20 टन का है, 200 का कहां से पैसे दूंगा मैं? तो बोले गौतम भाई नहीं दे रहे, वो खोलता ऐसी, चुप बैठो मैं आ रहा हूं, मैं LC खुलवाऊंगा। तो कौरी का समझा मैं आपको LC भेज रहा हूं। गया अहमदाबाद में, बैंकर से मिला, कैसे उसने समझाया बैंकर को, अगले दिन 200 टन का एलसी खोला, उसने कॉरियर को भेजा, माल आया, फिर उसने मार्केट में ऐसा धमाल मचाया जो उसके कस्टमर नहीं थे उसको बना दिया।
नाइस।
अब जिस भाव से उसने खरीदा था कोई भी इंडिया में उसको मैच नहीं कर सका, 20 टन फटाफट बिक गए, फिर 200 टन के बाद 2000 टन हो गए, फिर 5000 टन हो गए। उन दिनों प्लास्टिक से उसका सब इतना प्रभाव हुआ कि देश में हलचल मच गई, लोग उसके बारे में शिकायत करने लगे, तो उसके बाद कोई लोगों ने केस लगाया कि स्मगलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना तो कानून एक चीज कहता है, उस कानून को इस तरीके तो उसको कैसे थोड़ा जरा टेढ़ा कर दो, स्मगलिंग हो जाता है, इस तरफ टेढ़ा करो तो लीगल
है।
और कस्टम्स ऑफिसर के हाथ में बहुत क्या रहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्क्रिशन रहता है,
थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है,
ऊपर नीचे, तो उसको संभालना भी तरकीब रहता है।
ओके।
और गौतम बुद्ध ने समझ गया कि अभी देश की हालत और भी गंभीर हो रही है, 1990 का समय था, देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, पैसे नहीं थे, हमने अपना सोना गिरवी रखा था, और गौतम भाई ने सोचा इस समय एक्सपोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि फिर जो राष्ट्र की जरूरतें हैं मेरी भी जरूरतें हो सकती है और मेरे पैसे ज्यादा बनेंगे। और उधर से उसने ये अपनाया क्या कहते हैं फॉर्मूला अपनाया, जब मेरी इच्छा, जब मेरी तरकीब राष्ट्रीय तरकीब और राष्ट्र के गोल्स के साथ सहमत है तो तरक्की होने के चांसेस और भी अच्छे। यू शुड बी अलाइन टू नेशनल प्रायोरिटीज,
इंसेंटिव्स गॉट अलाइन, तो फिर तो ठीक है।
इफ इंसेंटिव्स एंड नेशनल प्रायोरिटीज आर अलाइन्ड, बिजनेस इज गारंटीड। उसको मालूम था गारंटी का मतलब क्या है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गया और किताब में लिखा हूं कैसे उसके भाई, उसके बड़े भाई विनोद है, दुबई में बैठते हैं हमेशा,
ठीक है,
ऑफिशियल कंपोजिशन नहीं है कंपनी में, पर विनोद का बेटा जो है ही इज ओवरऑल इन चार्ज, प्रणव अडानी,
ठीक है।
विनोद कह रहा था उस समय हम सब कुछ एक्सपोर्ट करते थे, जूते हो, टूथब्रश हो, टूथपेस्ट हो, जो कुछ भी हमें मिलता था ठीक दाम पर, और विदेश में कोई मार्केट है, कोई खरीदने वाला है, हम उसको भी लेते थे,
कोई भी देश में,
कोई भी देश हो, जहां भी कस्टमर दो रहा है पहुंचा देंगे। हम कैलकुलेशन करते थे किस तरीके से क्या भाव पे उचित रहेगा, हमारे प्रॉफिटेबल रहेगा, खरीदोगे। और उसी तरीके से उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू किया। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मैं एक चीज सीखा कि टूथपेस्ट अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो शायद ये पोर्ट से, ये बंदर से अच्छा है। आपको कपड़ा एक्सपोर्ट करना है तो वो बंदर अच्छा है, कस्टम्स ऑफिसर कपड़े को तोलना अच्छी तरह जानता है। तो कौन सा पोर्ट किस पदार्थ के लिए जरूरी है, अच्छा है, लाभदायक है, वो उसका उसको अंदाज मिला,
ठीक है।
दिस वे ही अंडरस्टूड पोर्ट्स वेरी वेल। उस समय एक और जानकारी उसे मिली कि पूरी दुनिया में अगर आपका पोर्ट है, पोर्ट में जहाज आने और जाने से इतना पैसा नहीं बनता है। हाँ, पैसे बनता है, छोटे पैसे बनते हैं। सबसे ज्यादा पैसा पोर्ट में बनता है जब माल आता है तो माल को स्टोर करके रखना, उसको शिप पर चढ़ाना, वो जो स्टोरेज का जगह है उसमें जो भाड़ा मिलता है, जो अंग्रेज में हम डिमारेज कहते हैं, उसमें चांदी उधर है। तो समझ गया कि पोर्ट में अगर जगह है, जमीन, तो आपके पैसे बन सकते हैं। उस समय पोर्ट कुछ पर ये सब जो चीज है दिमाग में बैठ गए। जो पोर्ट का अपॉर्चुनिटी आया वो पहली चीज क्या है, उसने जमीन खरीदी।
क्योंकि मेन पैसा तो स्टोरेज में बनना है,
वो बाद में बात करेंगे किस तरीके से क्या क्या क्या,
ठीक है।
पर पोर्ट बना, पोर्ट उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना था। देश ने एक्सपोर्ट ज्यादा करने के लिए एक नया स्कीम निकाला कॉल REP लाइसेंसेस, रिप्लेनिशमेंट एक्सपोर्ट परमिट्स।
ओके।
आप एक्सपोर्ट करो, कौन सा चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर इस सामान के लिए आपको इतना REP मिलेगा, उसके लिए आपको इसका ज्यादा मिलेगा, उसके लिए कुछ नहीं मिलेगा, वो पूरा टेबल,
ठीक है।
तो वो उन्हीं सामान को एक्सपोर्ट करता था जहां REP कोटा ज्यादा मिलता था। REP लाइसेंस के परमिट्स के साथ आप जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं, तो आप ड्यूटी भी बचाते हो। REP का महत्व यह रहता है कि आपके पहले से ही प्रॉफिट एक्सपोर्ट में हो गए, अब यह एडिशनल प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो, ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। तो सरकार की जो स्कीम था आरईपी लाइसेंस में, आरईपी इज ऑल्सो ट्रेडेबल, आप बेच भी सकते थे।
अच्छा,
तो डायमंड मर्चेंट्स आरईपी लाइसेंस बेचते थे, खरीदते थे कॉन्स्टेंटली। वो इस देश का आरईपी लाइसेंस का राजा हो गया,
क्योंकि समझ
में हर ट्रेडिंग करने लगा। किसी को कुछ इंपोर्ट करना था, उसको खरीदना था, उसने देखा गुजरात का, गुजरात गवर्नमेंट का एक कंपनी थी, वो काफी एक्सपोर्ट करते, उनको आरईपी में समझ में नहीं आया, सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरी में कुछ इंसेंटिव नहीं है। तो उसने कंपनी में गया, बोले बेटा भाई तू इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तेरी आरईपी मुझे दे दे, मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा। सरकारी नौकर कभी सोचा नहीं कि इसके लिए पैसे मिलेंगे। बोला अच्छा आप क्या, जो भी पेपर वर्क आप कर लो। तो पेपर वर्क करता था, उसको पैसे देता था, वो पूरी सरकारी कंपनी की भी आरईपी खरीदने लगा। उसे रूपी रूबल का ट्रेड था, रूपी रूबल ट्रेड का भी राजा हो गया।
ओके,
अब इस तरीके से बढ़ने लगा। तो उसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंपनी खोला, आरईपी के वन ऑफ द टॉप 5-star एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाउसेस इन इंडिया।
ओके,
एंड द फर्स्ट कंपनी टू गो पब्लिक वाज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इट वाज कॉल्ड अडानी एक्सपोर्ट्स, जिसका नाम बाद में उसने चेंज किया, इट बिकेम अडानी एंटरप्राइजेस, जो अभी पब्लिकेशन निकाल रहे हैं। उसके ओरिजिन्स उस ट्रेडिंग में थे। अब जब ट्रेडिंग चल रहा था, उस समय एक्सीडेंटली उसका मालूम पड़ा कि देश काफी कोयला इंपोर्ट करता है।
ठीक है,
एनटीपीसी को कोयला चाहिए थे, और कोल इंडिया के पास जो प्रोडक्शन था वो उतना नहीं था जितना कोल इंडिया को चाहिए था। तो देखा किस भाव में दूसरे लोग बेचते थे कोल इंडिया को, तो बोला मैं आपको उससे भी सस्ते में लेकर आऊंगा, मैं कोयला लेकर आऊंगा। तो पहले ट्रेडिंग किया, फिर देखा कि वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, और तो उसने इंडोनेशिया में कोल माइन खरीदा, तो माइन उसका था, शिप्स उसके थे, कोयला उसका था। बाद में जब पोर्ट का मौका मिला, तो पहला जब टर्मिनल जगह कोल के लिए बनाया, क्योंकि कोल भी उसका टर्मिनल था, तो सभी जगह पैसे बचाया, सभी का प्रॉफिट आया। और ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में, मुंद्रा वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड में कोल इंपोर्ट करके ईस्टर्न साइड बेचता था, फिर भी उसके दाम दूसरे कॉम्पिटिटर से कम थे,
क्योंकि पूरा सप्लाई चेन उसके
हाथ में।
वाओ,
तो इसी तरीके से वो ट्रेडर हो गया।
ओके, इससे पहले ना मेरे को एक बीच में क्वेश्चन है, मैं स्टोरी ब्रेक कर रहा हूँ, पर एकदम मेरे को काफी टाइम से क्वेश्चन है कि ये बोला कि जब हमारे बिजनेस के इंसेंटिव नेशनल प्रायोरिटी से अलाइन कर जाते हैं तब बिजनेस बनना ही बनना है, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आज के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग लोग हैं, वो सोचे कि नेशनल प्रायोरिटी क्या है, कहीं पे पढ़ सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं नेशनल प्रायोरिटी
क्या है? पड़ेगा सरकार को क्या क्या चाहिए। मान लो अभी सरकार को आजकल एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो।
ओके,
तो या तो आपका एडिबल ऑयल कोई कनेक्शन है म्यांमार में, क्योंकि एडिबल ऑयल काफी म्यांमार से आ रहा है, या कभी कभी पल्सेस दाल खरीदते हैं वो म्यांमार से आता है या कनाडा से आता है,
तो ये कहां दिखता है, लाइक ये पॉलिसी कहीं पे पढ़ सकते हैं?
वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर्स आपको देखने पड़ेंगे, इंडिया क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
तो गवर्नमेंट क्या इंपोर्ट कर रहा है वो देखना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेस क्या कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा,
चाहे प्राइवेट प्लेस है चाहे गवर्नमेंट हो, देश में आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई पैसा बना रहा है, या तो प्राइवेट बना रहे हैं पॉलिटिशियन के याद के आपका प्रॉक्सी बनने के बाद, या तो सरकार खुद इंपोर्ट कर रही है। आपको देखना पड़ेगा कितना वॉल्यूम कंट्री में आ रहा है, फिर देखना पड़ेगा कौन सप्लाई करता है, फिर देखना पड़ेगा किसका प्राइस सबसे ऊंचा है, उसको आप तोड़ सकते हो नहीं।
गॉट इट, दिस इज
सिंपल स्ट्रेटजी,
जस्ट लुक एट द डेटा, क्या गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रहा है, क्या मतलब देश इंपोर्ट कर रहा है, और वहां पे खेलो।
बिल्कुल,
और क्या देश एक्सपोर्ट कर रहा है वहां पे भी खेल सकते।
देखो एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, पर एक्सपोर्ट में अधिकतर क्या रहता है कि बंदे हुए हैं, अगर मैं कंपनी हूं और मैं पंप्स बेच रहा हूं, पंप्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरा ट्रेडर है जो पंप्स जानता है, जिसके पास कनेक्शन है बाहर, मैं दूसरे के पास नहीं जाऊंगा। तो उसमें थोड़ा एक्सपोर्ट में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रह सकता है, पर इंपोर्ट में इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पहले इंपोर्ट करो उसके बाद एक्सपोर्ट करो।
आप पैसे बना लो फिर देख लो अपने आप रास्ता खुल जाए,
पैसे आ जाते हैं, कनेक्शन आ जाते हैं, कस्टम से कनेक्शन हो जाते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हो।
गॉट, ठीक है, सो नाउ गेट बैक टू कोल।
अभी कोयला कर रहा था, उस समय वो काफी मशहूर हो गया कि ये जबरदस्त ट्रेडर है, कुछ भी ले सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो दुनिया में सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सपोर्टर इंपोर्टर है कारगिल। तो कारगिल ने उसके बारे में बहुत सुना, तो कारगिल के लोग आए गौतम अडानी से मिलने के लिए, बोले हमने सुना कि आप बहुत ट्रेडिंग करते हो और कुछ भी निकाल सकते हो देश में से, और बताओ ना क्या काम है। तो बोले देखो हमें नमक चाहिए, पूरी दुनिया में नमक बेचना है और सबसे सस्ता नमक कच्छ में बनता है। आपको मालूम गांधी जी का कच्छ मार दांडी मार्च, सौराष्ट्र कच्छ में सबसे अच्छा नमक, सबसे प्रॉफिट, सबसे सस्ता नमक बनता है। सॉल्ट पैन बहुत है उधर, और जो पानी है उसकी जो सलाइन क्वालिटी है उससे ज्यादा नमक
बनता है।
तो बोला हमें इतने मिलियन टन चाहिए, आप कर सकते हो? किस भाव में? तो दोनों बैठे अपने नंबर्स।
कारगिल ने एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी दी इसको।
अब गौतम को बोला हम इतना इंपोर्ट आपसे खरीदें, आप दे सकते हैं इतने मिलियन टन? तो दोनों ने अपने हिसाब किया, बोले इस प्राइस में बेच सकते हैं। कारगिल बोला अच्छा। तो गौतम भाई ने बोलो कौन से दरगाह, कौन से पोर्ट में आपको भी देना है? तो एक तो कांडला था और दूसरा जेएनपीटी था, और कच्छ से कांडला लेकर गए तो इतना पैसा, पर उधर रोड इतने अच्छे नहीं थे। कच्छ से जेएनपीटी आए तो रेलवे लाइंस है पर खर्चा ज्यादा होगा। तो जब कारगिल सोचने लगा, बोला अच्छा हमें एक 10-15 दिन दो, हम पूछताछ करके आएंगे। कारगिल ग्लोबल प्लेयर था, उसके पास काफी कनेक्शन थे। एक कनेक्शन था कोई नेटो का ना, सॉरी क्या कहते हैं, नासा का साइंटिस्ट, और नासा के पास मैप्स थे। तो साइंटिस्ट को बोला आप ये मैप्स देखो कहाँ सबसे अच्छा एरिया हो सकता है। तो नासा ने जो कोस्टल लाइन इंडिया की जो का जो स्टडी किया, उन्होंने बोला देखो ये जगह है मुंद्रा, वहां डेप्थ सबसे ज्यादा है और करंट्स जिस तरीके से आते जाते हैं उधर ड्रेजिंग भी बहुत कम की जरूरत है, यहां सबसे अच्छा आपका जेटी बन सकता है। तो कारगिल आया गौतम के पास, बोला देखो हमें हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुंद्रा में एक अच्छा जेटी बन सकता है। तो गौतम भाई गए कच्छ, उसका एरिया था, मुंद्रा गए, बोला अच्छा जगह है, बोला चलो बनाएंगे जेटी 50-50। ये पहली बार था जो गौतम अडानी 50-50 का गेम खेला।
Okay.
उसके जो भी पार्टनर्स हैं अधिकतर 50-50 है, 49-51 नहीं है, 76-24 नहीं है, और कई इंडस्ट्रियलिस्ट इवन 76-24 रिलेशनशिप संभालना बहुत मुश्किल समझते हैं। और ये ना गौतम बोला 50-50। उसका कारण ये बहुत ही सिंपल था, आपके पास नॉलेज है, मेरे पास ये देश के कनेक्शंस हैं, हम दोनों इक्वल रहना चाहिए, आपकी भी कंपनी है मेरी भी कंपनी है, दोनों संभालेंगे। और उसका नतीजा जो बेनिफिट्स मिला उसको बाद में, वो बाद में बताएंगे, पर बहुत बेनिफिट्स है। एंड गौतम अडानी इज द ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया जहां 50-50 की बात करता है।
ओके,
एक जगह नहीं, कई जगह।
ठीक है,
अब 50-50 की बात हुई, जेटी बनाने में 100 करोड़ जाने वाले थे। तो गौतम अडानी ने बोला ठीक है हम 50 करोड़ लेकर आएंगे। कैसे उसने 50 करोड़ लाया? क्योंकि उसके एक्सपोर्ट ट्रेडिंग, विनोद भाई दुबई में रहते थे तो कितना पैसा बाहर रहता था, क्योंकि ट्रेडिंग बाहर की कंपनी से तो उसका पैसा लीगली बाहर ही रहता है। किसी भी तरह से 50 करोड़ का बंदोबस्त हुआ, कोई शायद इन्फ्लुएंशियल लोग भी शामिल होंगे, पर प्लान हो गए, साइन हो गया, डॉक्यूमेंट तैयार हुआ और दोनों काम चालू करने लगे जेटी बनाने के लिए। अकस्मात उसी समय जॉर्ज फर्नांडिस अपने पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए, यूनियन पोर्ट्स मिनिस्टर। और जॉर्ज फर्नांडिस, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही गंभीर थी, उन्होंने एक नया पॉलिसी निकाला कि स्टेट पोर्ट्स कैन नाउ इनवाइट 100% FDI। इसका मतलब 100% इक्विटी फॉरेन पार्टी के साथ रह सकती है। पुरानी पॉलिसी थी कि फॉरेन पार्टीज कैन नॉट ओन मेजोरिटी स्टेक इन यूनियन पोर्ट्स, और 26% से ऊपर जा नहीं सकते। अचानक ये पॉलिसी से आया कि स्टेट पोर्ट 100% आप ले सकते हैं। तो कारगिल ने सोचा, रहा कारगिल अपना जेटी तो हम खुद ओन कर सकते हैं। तो गौतम के पास गए, बोले देखो भाई 100% ओन कर सकते हैं, अभी आप तो हमारे मित्र हो, तो आप अपना इक्विटी हमें दे दो, हम 90% ओन करेंगे, आप 10-11% अपने साथ रखो। गौतम भाई ने कहा दी भाई सौदा सौदा रहता है, जबान रहती है, और अपने पास एग्रीमेंट भी है, ये नहीं चलेगा। तो कारगिल ने तो हम आपसे काम नहीं करेंगे, हम पूरा 100% रखेंगे अपने साथ। तो मना नहीं बोला, ट्राई करो। और वो गए चीफ मिनिस्टर के पास, देखो हम फॉरेन एक्सचेंज लाने वाले हैं, आपका गौतम तैयार नहीं है। तो मुख्यमंत्री उसमें चमन भाई पटेल थे, देखो भाई ये सौदे की बात है, आप दोनों नक्की करो, अपने में सल्टो, मुझे बीच में मत डालो। कारगिल को जवाब अच्छा नहीं लगा, वो गया जॉर्ज फर्नांडिस के पास, बोला पैसे लाने के लिए तैयार की पॉलिसी है और ये सरकार और गौतम अडानी हम अपने पास हमें नहीं दे रहे हैं पॉट जेटी। तो जॉर्ज फर्नांडिस चिट्ठी लिखी उस समय चीफ मिनिस्टर को, तब तक शायद चीफ मिनिस्टर केशव पटेल हो गए, और उनको बोला कि देखो यहाँ पैसे आ रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो जो भी चीफ मिनिस्टर था वो सीधा चिट्ठी लिखा जॉर्ज फर्नांडिस, बोला ये स्टेट का मामला है, आप बीच में मत पड़िए। अब जॉर्ज फर्नांडिस बहुत शकी आदमी था, बहुत गुस्सा खाया, मेरी बात टालते हैं और मैं यूनियन मिनिस्टर हूं। तो कारगिल बोला छोड़ो उनकी बात, हूं मैं आपको पूरा टर्मिनल कांडला में दे दूंगा, कांडला इज यूनियन पोर्ट, कुछ नहीं कर सकते लोग, कांडला इज अ यूनियन पोर्ट,
ओके,
सरकार में सेंट्रल सरकार का पोर्ट, इट इज अ बिग पोर्ट, वहां टर्मिनल मिलना जैसे जेएनपीटी में टर्मिनल मिलना बहुत बड़ी चीज है, 100 गुना ज्यादा है, प्रॉफिटेबल है। तो कारगिल ये तो अच्छा है, तो सीधा गौतम भाई से वी आर नॉट वर्किंग विद यू, वी आर गोइंग टू कांडला। तो कांडला गए, वहां जब बात चल रही थी और डॉक्यूमेंट बना रहे थे, उसी तरह कांडला में स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक 5 साल रहा। कारगिल रियलाइज दैट ही कुड नॉट सेट अप द पोर्ट एंड टेक अ टर्मिनल कांडला, हाथ जोड़ा निकल गया देश से। और फिर जब निकल गया तो गौतम अडानी ने सरकार स्टेट सरकार को बोला कि देखो हम ये बनाना चाहते हैं, आप 26% लो, हम 74% लेंगे, लेट्स डू टुगेदर। सरकार ने मंजूर किया, ओके चालू किया, तो पोर्ट चालू हुआ,
मुंद्रा
चालू होने वाला था। जब तैयार हुआ, उसके पीछे भी कस्सा है, 2 मिनट के बाद बताऊंगा। जब तैयार हुआ तो गौतम अडानी ने सरकार के पास वापस गया, देखो आपने 10 रुपया शेयर लिया मुझसे, मैं अभी आपको 260 दूंगा, आप अपना 26% मुझे दे दो। सरकार एग्री, 100% ओनर हो गया, एंड आफ्टर दैट इट बिकेम हिज स्पॉट, इट इज परहैप्स द बिगेस्ट स्पॉट, द मोस्ट प्रॉफिटेबल पॉट इन इंडिया। अभी मैंने कहा गौतम ट्रेडर है, उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग कमोडिटी था कोल। जब पॉट बनाया तो पहला कहा देखो पॉट में शिप्स आने चाहिए, अगर शिप्स आने चाहिए तो शिप्स दूसरे बहुत बहुत लोगों ने कहा हम बनाएंगे पॉट वन, पर गौतम अडानी ने फैसला किया कि मैं किसी लाइनर को नहीं दूंगा क्योंकि वो अपनी शिप्स ही बुलाएगा, मुझे लाइनर नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो सभी शिप्स ला सके। तो उसने PNO से साइन किया,
ओके,
अनफॉर्चुनेटली फॉर गौतम भाई PNO इटसेल्फ गॉट सोल्ड टू दुबई पोर्ट वर्क्स, तो दुबई मालिक हो गया। फिर भी दुबई ने पहला टर्मिनल बनाया, और पहला टर्मिनल बनाया उसने DPW से बोला देखो तुम्हारा बिजनेस नहीं आएगा, बिजनेस के लिए पहला टर्मिनल बनाओगे कोल पर बना। तो DPW बोला ठीक है, तो कोल के लिए पहला टर्मिनल बना। तो अचानक क्या हुआ कि उसको DPW परसेंटेज देता था बिजनेस का, क्योंकि ही वाज अ कंसेशनर ऑफ गौतम अडानी, तो उधर से पैसे बन रहे थे, कोल ट्रेडिंग से पैसे बन रहे थे, उससे शिप्स या चार्टर बेसिस पर, फिर धीरे धीरे अपने खुद के शिप्स लगा दिए, हर एक जगह उसको पैसे मिलने लगे। जब धंधा बढ़ने लगा तो उसने कोल माइन खरीदा इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया कोल माइन की कैपेसिटी 300 मिलियन, और इंडिया की इंपोर्ट रिक्वायरमेंट हर साल है 100 मिलियन, फिर भी वो 100% तो नहीं ले सकता था, तो कम से कम 200,000 टन हर साल उसका बिजनेस चलता था सरकार के साथ, ओके, 1/5 ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स केम फ्रॉम गौतम अडानी एंड थ्रू मुंद्रा। जब पोर्ट चालू हुआ, जब पोर्ट बनने वाला था बालात वाला, तो पहला पोर्ट टर्मिनल वो सब खर्चा क्या था अपने PNO ने, अब दुबई पोर्ट वर्क्स। अब जब दूसरा पोर्ट बनाने वाला था, दूसरा टर्मिनल बनाने वाला था, तो सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाए, सभी डिजाइनर्स को बुलाए, सबने बोला 6,000 करोड़ करीबन जाएगा, 6,000 करोड़ उसके पास थे नहीं। तो जब चले गए तो अपने मैनेजर को बोला देखो 6,000 करोड़ मेरे पास नहीं है, 100-200 करोड़ का मामला है, मैं कर सकता हूँ, तो अभी आप पोर्ट को वापस रीडिजाइन करो, कहां से सबसे ज्यादा पैसा बनेगा,
ओके,
खाली उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, पूरा पोर्ट मत बनाओ, एक जेट्टी बनाओ चलेगा। तो पहला कोल बनने वाला था, उसके बाद फर्टिलाइजर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को गेहूं चाहिए था, ग्रेन्स चाहिए था, तो ग्रेन्स के लिए फैसिलिटी बना दिया। उसके बाद एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करने लगा तो उसके लिए फैसिलिटी बना दिया। तो पहले जो चीज थे वो वही चीजों पर बनाया जो खुद ट्रेडिंग कर रहा था। इसके लिए वो पॉट में शुरुआत से बिजनेस चालू हुआ, शुरुआत से ही प्रॉफिटेबल रहा। बहुत पॉट्स 10-10 साल तक प्रॉफिट नहीं बनाते हैं, उसका प्रॉफिट पहले दिन से बनने लगा। और वो प्रॉफिट जा रहे थे वो वापस उस बिजनेस में डाल रहा था और पॉट को धीरे धीरे
बड़ा करता रहा था।
अच्छा, अब पॉट बनाने में आपको ड्रेजिंग करना पड़ता है। पूरी दुनिया में ड्रेजिंग के लिए लोग ड्रेजर्स हायर पर लेते हैं, क्योंकि साल में 3 महीने का काम है, 9 महीने ड्रेजर बेकार रहता है। तो आप ये जनवरी फरवरी, जनवरी से मार्च लोगे तो मैं अप्रैल से जून तक लूंगा। एंड ईच वन वर्क्स आउट दिस टाइम।
ड्रेजिंग मतलब क्या होता है?
ड्रेजिंग मतलब जमीन में से जो मिट्टी आती है
उसको हटाना। अच्छा,
कि डेप्थ उतना ही रहे, शिप्स अटक नहीं जाए।
गॉट इट।
तो गौतम भाई ने ड्रेजिंग का ड्रेजिंग लीज पर लेना चाहा। उस समय खाली एक ही कंपनी थी ड्रेजिंग में, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, सरकारी कंपनी थी। बोला आपको 2-3 महीना रुकना पड़ेगा। मेरे पास 2-3 महीना टाइम नहीं, मेरा इंटरेस्ट जा रहा है। तो अपने लोगों से बोला ड्रेजर खरीद लो। तो सब बोले वो तो 50,000 करोड़, कम से कम 100 करोड़ का कॉस्ट है, हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बोले सेकेंड खरीद लो, देखो खरीद लो, फिर काम पर लगाओ। काम पर लगाओ, पर 3 महीने के बाद उसके लिए धंधा ढूंढो, तुम्हारा काम क्या है? तो ड्रेजर को इंपोर्ट किया, अपना काम हुआ, 9 महीने तक दूसरों को देने लगा जिनको 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 ड्रेजर चाहिए था। एंड द ड्रेजर बिकेम अ बिजनेस ऑफिस। फिर दूसरा ड्रेजर लिया, फिर तीसरा ड्रेजर लिया, आज 100 ड्रेजर्स है। ही इज बिगर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड इन ड्रेजिंग। अच्छा, वो किया तो उसने देखा कि पोर्ट का एक और टर्मिनल बन सकता है, फिर दूसरा टर्मिनल बन सकता है। और जब ये बात चल रही थी वो सिंगापुर गया, सिंगापुर में एक और ट्रेडर से मिला, उसका नाम है कोक, कोक हुन होंग। कोक होंग इज अ मलेशियन ऑफ चाइनीज डिसेंट। एंड उसको मिला, वो एडिबल ऑयल का सबसे बड़ा ट्रेडर था दुनिया, ये ईस्टर्न वर्ल्ड में।
ओके,
तो बोला आप मुंद्रा में क्यों नहीं करते हो एक एडिबल ऑयल कंपनी? अच्छा लगा यार, लड़का में वो दम है और पेट में आग है, भूख है, वो काम करेगा। तो मुंद्रा गया, उसे मुंद्रा तैयार भी था, रोड भी अच्छे नहीं थे। गया, 4 दिन में एग्रीमेंट साइन हुआ 50-50।
ओके,
और उसने वहां एडिबल ऑयल फैक्ट्री चालू किया, दैट इज अडानी विल्मार, जो लास्ट ईयर पब्लिक गई। और अडानी विल्मार हैज बिकम द लार्जेस्ट एडिबल ऑयल कंपनी इन
इंडिया।
अभी एडिबल ऑयल आने लगा तो क्योंकि उसके लिए अलग टर्मिनल बनाया कि एडिबल ऑयल जल्दी निकले, कि शिप ज्यादा टाइम में ही रुके पोर्ट पर और डिमारेज ज्यादा नहीं जाए, भाड़ा ज्यादा नहीं जाए। तो उसके लिए उसने बड़े बड़े पंप्स लगाए। तो पहले 100 टन्स पर डे इवैक्यूएशन था, आज 50,000 टन्स पर डे निकाल सकता है। तो उसने इन्वेस्टमेंट्स किया एडिबल ऑयल पर, उसके साथ उसमें एडिबल ऑयल की फैक्ट्री थी। साथ साथ में उसको मालूम था सरकार को ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। अब क्रूड ऑयल में सरकार कभी कभी जेएनपीटी से लेती थी, तो उसको किसी भी तरीके से बनाना था मुंद्रा में। तो उसने तरकीब सोची, वहां एक ऑयल टैंक फार्म बनाया। उसके लिए मित्तल, जो आर्सेलर मित्तल है ना, उसको बुलाया, एलन मित्तल को। बोला आप यहां टैंक फार्म बना दिए, मैं आपको सस्ते में जमीन दूंगा बाड़े पर। तो बड़ा ऑयल टैंक फार्म बना दिया। फिर इंडियन ऑयल को बोला देखो ऑयल टैंक फार्म है, आप इधर से ले लो ना, कम भाव में मिलेंगे आपको। तो इंडियन ऑयल ठीक है लिया। तो अडानी को एक और आइडिया आया, उसने सीधा एक पाइपलाइन बनाया मुंद्रा से भटिंडा तक, जहां इंडियन ऑयल का रिफाइनरी था। तो ऑयल टैंक फार्म से सीधा ऑयल जाता है भटिंडा में। अभी ऑयल इंडिया किसी और से लेना नहीं चाहते क्योंकि उसका पूरा
पाइपलाइन सेट है।
तो उसका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से सरकारी का, सरकार को ऑयल चाहिए था, अगेन नेशनल इंटरेस्ट विद बिजनेस इंटरेस्ट, फूड ग्रेन फूड कॉर्पोरेशन नेशनल इंटरेस्ट बिजनेस इंटरेस्ट, कोल नेशनल इंटरेस्ट बिजनेस इंटरेस्ट, सब शामिल। 3 बिग बिजनेसेस केम टू मुंद्रा। अब जो 3 बिजनेस आ गए, पंप्स चलाने के लिए आपको या तो डीजल यूज करना है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है, डीजल महंगा रहता है, तो उसने चलो एक इलेक्ट्रिसिटी बाईपास स्टेशन लगा दें। तो पहला प्लान था 100 मेगावाट का, फिर जब तक हो रहा था बोलिए हम 3 अलग अलग टर्मिनल्स बना रहे हैं, 300 का कर लेंगे, पर सरकार पैसे देगी, मतलब बैंक पैसे देंगे, तो केवी कामत से मिलने गए। तो बोला हम 200-300 मेगावाट के प्लांट्स लगाने वाले हैं, अपना ये बिजनेस है, ये कैप्टिव है, ये कैश फ्लोज है। कामत देखा बोले ठीक है, नॉट नॉट अ प्रॉब्लम, आई थिंक इज अ गुड, वी विल टेक इट अप। तो जो है उसने कहा विल गुड टेक इट अप, बाहर अपने फाइनेंस मैनेजर बोल रहा है डबल कर लो, 600 कर लो। वो खाली आधा दिखाता है, कितना उसका प्लान है किसी को मालूम नहीं, जब सौदा होता है तो उस समय डबल कर देता है। तो उसने सीधा पावर स्टेशन लगा दिया, पावर स्टेशन लगा दिया तो उसका पावर कॉस्ट नीचे कम हो गया सीधा, क्योंकि डीजल के बदले वो सीधा अपना पावर यूज कर रहा था। पावर स्टेशन लगाने के लिए उस समय भेल लगा रहा था 4 साल सप्लाई के लिए, तो उसको मान लो चाइना दे रहा है 3 महीने में, तो चाइना से सौदा किया, पर कंडीशन था चाइनीज के इंजीनियर सब यहां आएंगे, जब तक प्लांट फंक्शनल नहीं होगा तब तक पैसे नहीं मिलेंगे। चाइनीज दिन रात यहां काम किए, जब फंक्शनल हो गया पैसे उनको मिल गए, चाइना खुश इंडिया खुश। और वहां पूरी चाइनीज की बस्ती थी उस समय, अपने झगड़ों से पहले थी, 1990 जब कुछ कोई झगड़ा नहीं था, डोकलाम नहीं हुआ था उस समय।
okay.
और तो उस समय क्योंकि बड़ी चाइनीज बस्ती थी, वर्कर्स यंग रहते हैं, तो कई लड़की से मिले, 2-3 शादियां भी हो गई बहुत धूमधाम से, पर वैसा माहौल हो गया था।
okay.
तो सबसे बड़ा जो चाइनीज का परचेसर था टेक्नोलॉजी का, वो पास स्टेशन का, वो
अदानी बन गया।
फिर धीरे धीरे जब उसके प्लान्स बड़े बड़े हो गए, एंड ही वांटेड टू गो सुपर क्रिटिकल यूएमपीपीस, उसके बाद जर्मनी के पास गया। अब उस समय अभी 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, फिर 1300 का हो गया, 1340 का हो गया, तो उसका था अभी मुझे 6000 का बनाना पड़ेगा, इसमें सुपर क्रिटिकल, उसमें खर्चा कम रहता है पावर सस्ता रहता है, वो लगाना है। तो सरकार का एक टेंडर आया मुंद्रा के लिए, तो उसने बिड किया, पर टाटा उस बिड को छीन गया। तो उसके मैनेजर बहुत उदास थे, बोले अभी क्या करें, बोले जो हो गया छोड़ो। पर गौतम अपने रूल बुक के पास गया, जो सरकारी रूल्स है सब पढ़ने लगा, उसने देखा सरकारी रूल में एक और फैसिलिटी है Case 2 टाइप। Case 2 में अगर जमीन आपकी है, पैसे आप लोगे, सरकार से कुछ पैसे नहीं लोगे, और आप PPA साइन कर सकते हो किसी सरकार के साथ, तो आप पावर स्टेशन लगा सकते हो लाइसेंस के बिना। तो गौतम भाई एकदम तैयार था, बोला जमीन तो मेरी है ही, पैसे आप लगा सकते हैं। अभी PPA साइन करने गुजरात से बोला तुम्हारे पास पावर डेफिट, आप पावर महाराष्ट्र खरीद दो, मैं आपको पावर और भी सस्ता दूंगा, आप PPA मुझसे साइन करो। गुजरात ने साइन किया, और दूसरे दिन जितना टाटा का पावर प्लांट था उससे थोड़ा बड़ा गौतम भाई का प्लांट आ गया। तो मुंद्रा में 2 UMPP आ गए, उतना ज्यादा कोल आया, उतना ज्यादा धंधा कोल में आया, उतना ज्यादा धंधा पोर्ट में आया, उतना ज्यादा धंधा पावर जनरेशन और पावर ट्रेडिंग में आया। फिर उसके बाद उसके पास ड्रेजर्स थे, पोर्ट था, फिर दहेज में उसने LNG टर्मिनल चालू किया, उसने माल था, इस देश को LNG की बहुत जरूरत होगी, कोल में बहुत धुआं निकलता है, धीरे धीरे पूरा देश गैस की तरफ जाएगा, तो एक LNG स्टेशन वहां लगाया, फिर 2-3 LNG स्टेशन देश में लगाया, हर एक जगह पोर्ट बनाया, आज उसके 12 पोर्ट है, और अभी ये 2 साल में 14 हो जाएंगे इंडिया में। अब उस समय एक और चीज आपको याद रखना जरूरी है, टाटा और लार्सन टुब्रो 10 साल पहले सोचे हम भी पोर्ट बनाएंगे।
Okay.
हमारे पास जमशेदपुर प्लांट है, उसको कोल चाहिए, तो उन्होंने बोले चल हम पोर्ट बनाएंगे उड़ीसा में, तो धामरा में उन्होंने पोर्ट बनाना चालू किया। बहुत एजिटेशन हुआ, आप टर्टल्स का ब्रीडिंग ग्राउंड है उसको बर्बाद करोगे, पर बाद में 5 साल कोर्ट केस चला, फिर जीत गए और पोर्ट बनाए। लार्सन टुब्रो जैसा कंस्ट्रक्शन और टाटा जैसा दोनों बहुत बड़े महारत, पोर्ट चला 4 साल के लिए चलाया, प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। कैसे पोर्ट चलाना चाहिए, किस तरीके से लॉजिस्टिक्स आना चाहिए, उनके उनके बस की बात नहीं थी। आखिर में अपने गौतम भाई को बेच दिए, गौतम भाई को बेच दिया, अगले साल से प्रॉफिट आया।
तो
एक बात बताओ कि पोर्ट में तो मान लो कि गौतम भाई को महारत ही हासिल थी, उनको पोर्ट चलाना आता है, लेकिन वो जो बिजनेस हाथ लगाते हैं वो सब कैसे चला लेते हैं? क्योंकि हर हर किसी को हर बिजनेस चलाना थोड़ी आता है।
देखो वही खूबी है 50-50 रेशियो में। अब विल्मार कैसा 50-50 क्या? अब विल्मार तेल जानता है, कौन सा आदमी अच्छा रहेगा एम्प्लॉय के, जैसे विल्मार चुनता है। उसका सैलरी नेगोशिएशन विल्मार और रानी करते हैं, बट टेक्निकल इवैल्यूएशन, वर्क इवैल्यूएशन विल्मार करता है।
नॉलेज विल्मार है,
नॉलेज उसके पास है, किस तरीके से प्लान चलना चाहिए, किस तरीके से आदमी को सिलेक्ट करना चाहिए, वो उसके पार्टनर का काम है, क्योंकि प्लांट पार्टनर का भी है। तो जहां भी जाता है उसका पार्टनर उसको मदद करता है,
बाकी हर जगह, क्योंकि लॉजिस्टिक्स उसका गेम है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका गेम है।
जब पार्टनर के पास 24% मैं क्यों काम करूं, आप अपने आपका काम है ना, आप 76% ओनर हो, यहां उसका 50% लगा है।
तो सारे बिजनेस में ऐसा है,
अधिकतर अधिकतर कोई कोई बिजनेसेस है जहां उसके पास उसने अलाउ नहीं किया है, जैसे पॉट्स में किसी से शेयर नहीं करता है, वो उसका बिजनेस है,
उसको आता है।
पावर में भी उसका ही है, बाहर के पार्टनर्स नहीं है। सोलर पावर में उसके पास है टोटल के साथ 50-50। डेटा मैनेजमेंट पर है आईकॉमनेक्स के साथ 50-50। गैस डिस्ट्रीब्यूशन आईओसी के साथ 50-50।
बाकी सारे 50-50 के। ओके, तो ये पावर भी इनके हाथ में हो गया। अब अदानी ग्रुप कितना बड़ा है?
काफी बड़ा है।
तो अब मेजर उनके टॉप 10 बिजनेसेस कौन कौन से हैं?
सबसे बड़ा है पॉट्स,
आज भी
पावर, फिर सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी।
बट सोलर अभी oil. सोलर इज प्रॉफिटेबल टुडे? नो, सोलर इज इन्वेस्टमेंट वाइज सबसे बड़ा है।
इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा है एंड ही हैज पीपीएस विद द सरकार, तो प्रॉफिटेबल है।
एक दिन बन जाएगा,
नहीं प्रॉफिटेबल है। PPA is a, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट किया, मान लो 100 करोड़ इन्वेस्ट किया और सरकार आपका पावर ले रही है 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए में ले रही है, तो वो नकी हो गया, वो कैश फ्लो है, एन्युइटी 20 साल के लिए आपको परवाह नहीं करनी पड़ेगी। आदमी आएगा तो कल आएगा, तो आप इंटरेस्ट बिल्ट इन है, सब कुछ डेप्रिसिएशन बिल्ट है, प्लांट कॉस्ट बिल्ट इन है। आप खाली एक साल का मत देखिए, आप 20 साल का देखिए। जब पीपीए साइन होता है, आप 1-2 साल के लिए पीपीए नहीं साइन करते, आप साइन करते 10 साल के लिए। तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी 10 साल में देखना पड़ेगा।
सो ये पोर्ट्स हो गया, पावर हो गया, आपका सोलर हो गया,
गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया,
गैस हो गया, ऑयल, एडिबल ऑयल,
एडिबल ऑयल हो गया,
और कौन से एयरपोर्ट्स?
अभी एयरपोर्ट्स अभी शुरुआत की है। अब बॉम्बे तो प्रॉफिटेबल पहले से था, ज्यादा पैसे डालेगा, अब नया एयरपोर्ट बना रहा है तो ज्यादा पैसे डालेगा, बाद में उसका फायदा आ जाएगा पैसा, वो कैश फ्लो देखता है।
खासियत क्या है गौतम अदानी में भी?
देखो उसके दो चीजें हैं, एक अपने लोगों से कहता है डोंट लुक एट द मार्केट, कितना मार्केट शेयर होगा उसके बारे में भूल जाओ, आप अपना कॉस्ट देखो, आपका कॉस्ट दूसरों से नीचे है नहीं, मार्केट अपने काबू में नहीं है पर कॉस्ट कंट्रोल अपने काबू में है, फोकस ऑन कॉस्ट, आपका कॉस्ट नीचे रहा आप कॉम्पिटिटिव, आपकी तरक्की होगी। He's ruthless in costs.
सबसे सस्ता मुझे ही चाहिए,
सबसे जहां भी कॉस्ट कट कर सकता है वो कट करेगा। दूसरी, रिलेशनशिप्स रखो, कभी तोड़ो नहीं। तीसरा, नेवर गो पब्लिक जब तक आपके प्रॉफिट नहीं बनने लगे, पब्लिक पर लॉस मेकिंग यूनिट कभी मत डालो, पब्लिक पर एक प्लैंड प्रोजेक्ट मत डालो। अपना खर्च करो, प्रॉफिट्स बनाओ, आपका वैल्यूएशन भी अच्छा रहेगा, इन्वेस्टिंग पब्लिक भी खुश रहेगी।
तो 4-5 तरी एंड ओके, नाउ अ लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन, कि डू यू थिंक कि अदानी में कुछ गलत भी है, कुछ गलत कर रहा है, या कोई अच्छा, कोई ऐसा पॉइंट है?
गुड क्वेश्चन। देखो गलती तब रहती है जब आपको आप उदास हो जाते हो, आपको लगता है ये नहीं करना, क्या करना चाहिए। गौतम भाई डज नॉट बिलीव इन रिग्रेट्स, ही डज नॉट बिलीव दैट देयर इज अ मिस्टेक, एवरी मिस्टेक इज एन अपॉर्चुनिटी,
मानते नहीं है कोई गलती हुई।
अगर उसका कोई ट्रेडर है, उसका एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, एक ट्रेडर ने कम से कम 50 करोड़ का लॉस लगाया है एक ट्रेड पर, सब लोग उसे कोसने लगे और आदमी उदास होकर अपने राजीनामा दे दिया। गौतम भाई बुलाया उसे, उसे मानता आदमी अच्छा है, दिल का साफ है। बोला क्यों? 50 करोड़ खवाए और अपना पूरा एक्सपीरियंस मेरे खर्चे पर कर रहे हो, तुम इधर ही काम करोगे? 50 करोड़ रुपए तुम वसूल करोगे, कैसे वसूल करना है, आपको कितना पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, मेरा काम है। He will give more opportunities to that man so that he can not only make money for himself, he can make more money for the company. There's no such thing as a bad decision. If there's a bad decision, it's only a temporary bad decision, he will cut it off immediately. जैसे वो आशापुरा ग्रुप के साथ एल्यूमिनियम बनाना चाहता था 1990s में, काम चालू हुआ, प्लान था 10,000 करोड़ डालने का, तो गौतम अदानी समझ गया 2 महीने में ही कि ये नंबर वन नंबर टू बंदेश में बनने वाला नहीं है, और उसका प्लान खाली उस समय उसका एक डिसीजन है, अगर मैं नंबर वन या नंबर टू नहीं बन सकता देश में, मैं नंबर तीन तक जाने के लिए तैयार हूं, उससे कम रहेगा तो मेरे दिल में मुझे ये कंपनी नहीं चाहिए। तो देखा ही नहीं होगा, बहुत मैनेजमेंट टाइम जा रहा है। अपने साथी को बोला तुम संभाल सकते हो, मेरे पास कुछ टाइम नहीं है। साथी के पास इतना बैंडविड्थ नहीं था, वह बंद कर लो। वेल्सपन ग्रुप बीके गोयनका वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ हिज, दोनों ऑयल एक्सप्लोरेशन में गए, अगेन 50-50 जमा नहीं, मूड बैठे
बंद कर लो। तो जो भी करना है,
अगर मिस्टेक हो रहा है, गलत डिसीजन है, इट्स अ गलत डिसीजन, कट इट ऑफ बिफोर इट बिकम बैड।
पर जो भी करना है वो नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री ही करना है, नहीं जा रहा
मैं तो नहीं। एंड रिमेंबर ऑलमोस्ट एवरी प्रोजेक्ट दैट ही हैज गॉट इन इंडिया इज थ्रू ओपन टेंडर बिडिंग।
आई वाज गोना कम
टू दिस, सरकारी फेवर्स,
आई वाज गोना कम टू दिस, कि डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट बहुत फेवर करती है?
देखो भाई, खाली एक प्रोजेक्ट था, वो है पोर्ट्स, मुंद्रा पोर्ट, जो नेगोशिएटेड डील है सरकार के साथ, वो भी 10 रुपए में सरकार ने शेयर खरीदे, उसने 207 दिया और ले लिया।
नहीं, जो आसपास जमीन खरीदी 1 रुपए में, वो सब,
वो देखो, अभी आप जाओ बम्बई से कम से कम 500 किलोमीटर अंदर विदर्भ की तरफ, आपको जमीन वहां भी मिलेगी 10 रुपए के एकड़ पे, किसान उसको चारना गाय चराने के लिए लेके जाते हैं, 100 रुपए में मिलेगी, पर जमीन कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, कि क्या करेगा उधर, वो उगाएगा भी तो निकालेगा कैसे, ट्रक लगाएगा तो खर्चा होता है ना। पर एक बार जमीन आ गई, आप उधर रोड बनाओ, उधर रेल लगाओ, कनेक्टिविटी डालो, तो जमीन का दाम 150 रुपए से 1 लाख हो जाएगा।
और उसने वो किया।
अभी आप सोच रहे कि उसने 1 रुपए में खरीदा, उस समय 1 रुपए का भाव था। वो बिल्कुल खाड़ी जमीन थी, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, वही मार्केट भाव था, उसने मार्केट भाव से खरीदा। और आप प्रोस्पेक्टस देखो 2007 का, जो मुंद्रा का प्रोस्पेक्टस है, उसमें लिखा है क्लियरली उसके पास 35,000 acres लैंड है। इस देश में कोई भी पॉट के पास इतनी जमीन नहीं है। अब जमीन आ गई तो आपके 4 फायदे, एक, आपके पॉट के पास वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज है, डिमारेज बहुत आने वाला है, 2, आपके कैपिटल कॉस्ट बहुत कम है तो इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा नहीं है, 3, आपके कनेक्ट हो गई, दाम लैंड का दाम तो ऐसे ही बढ़ गया, 4, आप रियल एस्टेट अपने एम्प्लॉयज के लिए घर बना रहे हो, उधर पैसे बन रहे हैं, वो भी खरीदते नहीं है, वो भाड़े पर देते हैं या लीज पर देते हैं, 5, नई कंपनियां उधर स्थापित करने का उसका उसका प्लान है। दुनिया में सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज आर बेस्ड ऑन शोर्स नियर पोर्ट्स, क्योंकि इंपोर्ट अच्छी तरह होता है, एक्सपोर्ट अच्छी तरह होता है, खर्चा ज्यादा नहीं रहता है, चाहे कार्स हो, ऑटोमोबाइल कंपनीज हो, चाहे स्टील कंपनीज हो, चाहे बड़े बड़े पेपर की कंपनी हो, सब पोर्ट्स के पास में रहते हैं। इंडिया खाली मिस्टेक किया, अंदर डाल। तो उसके पास अभी मारुति ने अपना पूरा जो एक्सपोर्ट हब मुंद्रा पर बनाया, उसका 16 प्लांट्स का पूरा हब मुंद्रा में रहेगा, उसके डिफेंस डील सब मुंद्रा में रहेंगे, क्योंकि अधिकतर डिफेंस डील मिसाइल्स ड्रोन्स उनको एयर स्ट्रिप चाहिए मुंद्रा में, उसके पास 2.2 किलोमीटर एयर स्ट्रिप है जहां सबसे बड़ा हवाई जहाज आ सकता है। 10 साल रुको, उसको भी कमर्शियल करेगा वो, जमीन उसकी थी, एयर स्ट्रिप उसका है। एमआरओ बिजनेस जो सर्विसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट है उसने सबसे बड़ी कंपनी खरीद ली है, तो जो भी सर्विसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट चाहिए वो उसके पास आएगा, क्योंकि एयर स्ट्रिप है, समुद्र है और जमीन है। तो धीरे धीरे एक करके दूसरी, दूसरा करके तीसरा, सभी कंपनीज आएगी उसकी जमीन पर। अब बोरिस ने उसे परमिशन दिया कॉपर प्लांट लगाने के लिए, तो थोड़ा कॉपर प्लांट उधर बनाएगा, बेसिक मटेरियल उधर बनाएगा, बाकी मटेरियल समुद्र लेकर आएगा कोस्टल शिपिंग, और शिपिंग इज चीपर। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए सोचे, अगर आपको समुद्र से इंटरनेशनल हाई सीज इंटरकॉन्टिनेंटल ओशन ट्रेड देखोगे, अगर ₹1 एक टन के लिए लगता है, ₹1 एक टन एक किलोमीटर के लिए लगता है, आप कोस्टल शिपिंग में जाओगे तो ₹3 एक टन एक किलोमीटर ज्यादा है, आप रेलवे पर जाओगे तो ₹6 पर टन पर किलोमीटर जाता है, आप ट्रक से जाओगे तो ₹12 पर टन पर किलोमीटर। और उसके बावजूद भी अपने देश में अधिकतर ट्रक्स है, रेलवे कम है और सी उससे भी कम है। गौतम अडानी चेंजिंग दैट।
इंटरेस्टिंग। तो अब फ्यूचर सिर्फ अडानी का है,
देखो
कि
उसके पास डिफेंस डील्स है, डिफेंस डील्स में कोई टेंडरिंग नहीं रहता है, डिफेंस डील्स दुनिया भर में अपनी बल शक्ति पर चलो और सरकार से कनेक्शन अच्छे रहे। बिगेस्ट कस्टम, द ओनली कस्टम इज द सरकार,
डिफेंस ऑर्गन,
तो इसीलिए आपको सरकार के कनेक्शन अच्छे है। मोदी अपना अडानी नोज हाउ टू मेंटेन रिलेशन विद एवरीबॉडी। जब बंगाल में गए तो ममता बनर्जी को खुश कर दिया, ममता बनर्जी से एग्री टू गिव हिम दिया फॉर रीडेवलपमेंट, एंड इज ऑल्सो गॉट ताजपुर इन वेस्ट बंगाल, दो पोर्ट्स उसके पास आ गए। एंड ममता बनर्जी इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ बीजेपी। गहलोत के पास गया, गहलोत ने बोला मेरे यहां खान लगा दो।
तो मतलब अडानी कोई भी गवर्नमेंट होती बनता तो सही,
बनता है, उसको मालूम है किससे बात करने, किससे रिश्ते बनाने। वन ऑफ हिज बिग क्वालिटीज इज बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड मेंटेनिंग देम। अच्छा, आप दद्दी की बात कर रहे हो, उसके पास एक और चीज है, जिस स्टेट में काम करता है वो स्टेट गवर्नमेंट से बोलता है आपके स्कूल्स कैसे हैं, आपको मदद चाहिए, आप कोई भी स्कूल मुझे देना चाहते हो हम बिना चार्ज करें आपके स्कूल को संभालेंगे। आज उसके करीबन 6,000 स्कूल है इंडिया में, वो टीचर्स की सैलरी नहीं बदल रहा है। प्रीति अडानी ने मुझे बोली कि सरकार की जो सैलरी टीचर्स के लिए है वो मेरे टीचर से ज्यादा है, जो मैं टीचर्स अपॉइंट करती हूँ गुजरात में मेरे प्राइवेट स्कूल में, मैं उनको कम सैलरी देती हूँ। सरकार अच्छा पैसा देती है पर सरकार मॉनिटर नहीं करती है, तो वो अपने मैनेजमेंट टेक्निक्स लाती है, मेजरिंग इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ स्टूडेंट्स, इनपुट्स एंड आउटपुट टीचर्स। आज स्टूडेंट को 50% मिला लास्ट ईयर सेकंड क्लास में, अब थर्ड स्टैंडर्ड में 55 नहीं मिला तो टीचर ने क्या काम किया? टीचर पर पेशा आता है, आप इंप्रूव करो। नहीं तो हम रिपोर्ट गलत ले, खराब रिपोर्ट लिखिए सरकार को, कि टीचर को सिखाना नहीं आता है। एज अ रिजल्ट इन स्कूल्स पेरेंट्स है, माता पिता है जो बोलते हैं अडानी के प्रिंसिपल्स को, हमें हमारे बच्चे को एडमिट करो ना, हम प्राइवेट स्कूल से निकाल के आपके स्कूल में डालना चाहते हैं। सरकारी स्कूल है, मैनेजमेंट मेक्स अ डिफरेंस।
नाइस।
और इसीलिए मुझे सरकार पर काफी गुस्सा आता है जब सरकार कहती है सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां, इट्स सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट। क्यों है कि केरला का आदमी अपने राज्य में कभी इंडस्ट्री बढ़ने नहीं दिया, पर वही केरला का आदमी जब दुबई जाता है या सऊदी जाता है फर्स्ट क्लास वर्कर रहता है। आदमी वही है, काम वही है, उस जगह क्यों अच्छा वर्कर हो गया, इस जगह खराब आदमी है? सरकार की पॉलिसी से ना, अगर पॉलिसी ठीक है आदमी अच्छा रहता है, पॉलिसी गलत है आदमी बुरा रहता है। आदमी को दोष मत दो,
कमिंग बैक टू द अदानी ग्रुप ओके एंड द क्वेश्चन विच आई हैड कि यहाँ से अब नेक्स्ट क्या है. डू यू थिंक कि देर इज आई एम श्योर आप स्टडी करते हो अंबानीज को अदानीज को टाटास को नेशनल पॉलिसीज को राइट जियो पॉलिटिक्स को हर जगह. सो अभी इन नेक्स्ट 10 years और 20 years अब सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप कौन बनेगा? अदानी ही कंटिन्यू रहेगा?
अदानी कंटिन्यू. मैं बताऊंगा इसका कारण.
हाँ लाइक ऐसा क्यों कि अदानी अंबानी से बेटर रहेगा बड़ा ग्रुप बन जाएगा?
अभी से ही बड़ा अभी तो बड़ा हो गया अदानी से. अब टाटा इज बिगर.
हाँ
गिव 2 years ही विल बी बिगर देन टाटा. लेट मी एक्सप्लेन व्हाई.
तो अदानी यू आर सेइंग दैट अदानी विल बी बिगर देन मतलब अदानी अंबानी टाटा बिरला सबसे बड़ा होगा. अभी ऑलरेडी काफी सबसे बड़ा ही है सिर्फ टाटा से छोटा है.
बिल्कुल उसके तीन कारण
और वो कंटिन्यू रहेगा.
उसके तीन कारण है. एक ऑस्ट्रेलिया में उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कोल माइन है. इंडिया इंपोर्ट्स 200 मिलियन टन ऑफ कोल एवरी ईयर. ओके शायद अपने डोमेस्टिक माइंस बढ़ गए तो 100 मिलियन टन तो इंपोर्ट करना ही है. उसका जो इंडोनेशिया माइन है उसके पास कैपेसिटी 300 मिलियन टन कैपेसिटी है रिजर्व्स. ओके आज इंपोर्ट करता है उधर से 20,000 टन 30,000 टन निकलता है. जब इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट टैक्स लगाया तो अदानी ने सोचा नहीं डी रिस्क करना है. ऑस्ट्रेलिया के पास गया. वहां 10 साल के लिए झगड़ा हुआ. फाइनली उसको क्लियरेंस मिल गई. ऑस्ट्रेलिया का जो माइन 8 हजार मिलियन टन की कैपेसिटी थी. उसके लेने के बाद और भी रिसर्च करने के बाद उनको मालूम है कि उसका कैपेसिटी 10.5 बिलियन टन 10.5 हजार मिलियन टन. वो पूरे देश पूरी दुनिया को सप्लाई करने वाला है. चाइना को भी सप्लाई करेगा, इंडिया को भी, अफ्रीका को भी. पर उसे मालूम है कोयले के दिन लिमिटेड है. बहुत लोग चाहते कि तू कोयला का अलाउ नहीं कर रहा,
बंद कर,
बहुत पॉल्यूट कर रहे हैं. तो उसने अभी एक नया प्लांट चालू किया है टू कन्वर्ट कोल इनटू प्लास्टिक. जो पहले लिमिटेड क्वांटिटी में कैंप्लास करता था मेटूर में साउथ इंडिया में, उसको अब स्केल अप किया. पीपल हैव बीन अपॉइंटेड. तो ऑयल किसे प्लास्टिक बनाने के बदले वो कोल से प्लास्टिक बनाएगा. दोनों कार्बन है. एक में ज्यादा इंप्योरिटीज है. किस तरीके से इंप्योरिटीज निकाल सकते हैं उसका, इट्स अ टेक्नोलॉजिकल मैटर. सो इज वर्किंग ऑन दैट. ही विल कंटिन्यू यूजिंग कोल इन अ वैरायटी ऑफ वेज फॉर वैरायटी ऑफ बिजनेसेस, नॉट जस्ट फॉर बर्निंग. पर उसके पास सबसे ज्यादा सबसे बड़े थर्मल प्लांट्स है. और थर्मल प्लांट्स की लाइफ है 25 years. तो 25 साल तक उसके थर्मल प्लांट्स यहाँ इंडिया में और सरकार के थर्मल प्लांट्स इंडिया में, वो तो कोल यूज करने वाले हो, चेंज करने का चांस ही नहीं है. तो 25 साल के लिए उसके पास बिजनेस है.
तो ये एक रीजन है. यू सेइंग 3 रीजन.
फिर दूसरा है एयरपोर्ट्स. ही कंट्रोल 7 एयरपोर्ट्स नाउ. न्यू एयरपोर्ट्स कमिंग अप,
12 टोटल हो जाएंगे.
ज्यादा बढ़ता रहेगा. ही इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्लेयर इन एयरपोर्ट्स. एयरपोर्ट में क्या है, एक बार ले लिए तो जो भी अंदर जाता है बाहर जाता है उसको पैसे मिलते हैं. आप प्रीपेड टैक्सी लो बंबई में, 40 रुपए हर एक टैक्सी वाला हर एक भाड़े के लिए सर एयरपोर्ट को देता है. दुकान वाला देता है, पैसेंजर देता है, एयरलाइन टिकट पर एयरपोर्ट टैक्स रहता है उसमें.
बट एयरपोर्ट बिजनेसेस ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहे.
बहुत प्रॉफिटेबल रहे. इट्स अ मेथड ऑफ मैनेजिंग कॉस्ट्स. अगर आप कॉस्ट अच्छी तरह मैनेज करो प्रॉफिटेबल है, अच्छी तरह नहीं मैनेज करो लीकेजेस रहते हैं.
ओके सो कोल वर्ल्ड का सबसे बड़ा,
फिर सबसे
इंडिया में मोनोपोली उसकी एयरपोर्ट्स पे हो जाएगी.
एयरपोर्ट पे है, पोर्ट्स पे तो है ही. और पोर्ट्स में उसके पास 3 विदेशी पोर्ट्स हैं. उसके पास श्रीलंका में एक पोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया में एक पोर्ट है, और अभी इसराइल में हाइफा में एक पोर्ट है. और दुनिया में 2-3 और पोर्ट बनने वाले हैं. सो विल बिकम अ ग्लोबल किंग ऑफ पोर्ट्स. उसके पास हर दिन कम से कम 600 जहाज शिप्स उसके सामान लेकर जा रहे हैं. रूल ऑफ थम 10% तो आपके खुद के शिप्स हैं, बाकी सब टाइम चार्टर पर लेते हो. तो 600 इसका मतलब 60 शिप्स उसके हैं. ही इज द बिगेस्ट शिप ओनर आल्सो इन इंडिया. पर खाली वो फॉरेन कंपनीज के ओनरशिप में, फॉरेन फ्लैग ओनिंग है. फॉर ऑब्वियसली देश में टैक्स है, बहुत इंप्लीकेशन है. बट ही इज गॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्गो शिप फ्लीट्स इन द वर्ल्ड. डोंट बी सरप्राइज इट बिकम्स एज बिग एज इटोचू और मारुबेनी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडर्स. एंड ही हैज गैस डिस्ट्रीब्यूशन विच इज अ मनी स्पिनर.
For using 32% licenses are under him. पूरे देश का 32% गैस अदानी के पास.
तो और अभी तक आधे बिजनेस अभी चालू नहीं किए. कॉपर नहीं चालू हुआ है, स्टील नहीं चालू हुआ है, एल्यूमिनियम नहीं चालू हुआ है,
डेटा मैनेजमेंट
नहीं चालू हुआ है. और फिर उसके पास डिफेंस, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग ड्रोन्स टू द वर्ल्ड, मिलिट्री ड्रोन्स. He has gone to agricultural drones also. Expect him to be a big player in agriculture. He is the only Indian who has end-to-end solutions for apples. Himachal Pradesh mein, he teaches farmers how to grow apples. Kaise pack karke uske factory mein lana hai. Factory mein jab sorting hota hai, har ek kisan ko bithata hai viewing gallery mein. Jahan all the apples go on a conveyor belt and they're sorted on the basis of four parameters: weight, color, size and firmness. और 20 डब्बे हैं, वो डिब्बे में एप्पल गिरते रहते हैं. हर एक डब्बे का प्राइस रहता है किस कितने रुपए किलो का है. और उसके बाद में वो बताता है फार्मर को, आपके ये क्वालिटी का ये कितने किलो है, ये क्वालिटी का इतने किलो है, आप हिसाब जोड़ो कितना मिल रहा है आपको. और शाम तक उसके पास पैसे आते हैं. पुराने समय में आरतिया 3 महीने के बाद पैसे देता. उतना ही नहीं, ही टीचर्स फार्मर्स हाउ टू ग्रो एप्पल्स, कौन से सीज लेना है, किस तरीके से फर्टिलाइजर लगाए, किस तरीके से पेस्टिसाइड लगाना है. ही गिव्स फ्री एजुकेशन टू द एप्पल ग्रोअर्स चिल्ड्रन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज फॉर द एप्पल ग्रोअर्स चिल्ड्रन. जो सरकार को करना चाहिए वो खुद कर रहा है.
सो अच्छा, एक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज लॉट ऑफ टाइम्स यू कीप हियरिंग कि डेट बहुत है, वो डेट लेते जाता है. तो ये अदानी एक बहुत बड़ा बबल है, एकदम से फटेगा क्योंकि उसने इतना डेट ले लिया है विच ही माइट नेवर बी एबल टू रीपे.
देखो, डेट जो है ना एक अजीब चीज है. अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप ये नहीं देखते कितना उधार का पैसा है, कितना मेरा पैसा है. मुझे उस पैसे पर कितना पैसा बनता है वो इंपॉर्टेंट है. अगर मेरे पैसे ज्यादा बनता है, अगर बनते हैं, अगर मैं उस पैसे पर ज्यादा पैसा कमा सकता हूं तो मैं ज्यादा उधर लूंगा. फ्रॉम अ बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, इफ डेट अर्न्स अ रेट ऑफ रिटर्न दैट इज हायर देन द मार्केट वैल्यू ऑफ मनी, बोरिंग मोर इज गुड. बट फ्रॉम अ बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जितना आप बोरो करोगे उतना रिस्क ज्यादा है. तो बैंकर वो रिलेशनशिप रखता है 1:2 या 1:4 रहना चाहिए. 3 साल पहले अडानी डेट वॉज 7 times हिज ओन मनी. आज उसका 3 times हिज ओन मनी हो गया क्योंकि उसके प्रॉफिट आने लगे. तो जो ऊंचा था 3 साल पहले वो अभी तो नीचे आ गया ना, क्योंकि उसके कैश फ्लो बढ़ रहे हैं. हिज कैश फ्लोज आर ग्रोइंग फास्टर देन द इंटरेस्ट कॉस्ट. अगर आपका कैश फ्लो
बढ़ रहा है तेजी से,
इंटरेस्ट कॉस्ट से ज्यादा है और बढ़ रहा है परसेंटेज वाइज, व्हाट इज रॉन्ग?
हाँ, थोड़े टाइम बाद ब्रेक इवन होगा, उसके बाद ज्यादा निकलेगा,
प्रॉफिट आ जाएगा. Which is why debt is something which bankers like to talk about and journalists like to talk about. For a businessman, debt or equity doesn't matter. Paise bante hain ya nahi? What is it? Agar paise bante hain, it does not matter. Paise. Kiska paise? Bhul jao.
Loan ka paise, khud ka paise, bahar ka paise. Bhul jao. Koi farq nahi padta.
Mujhe paise usme bante nahi. Theek hai. Byaj de denge. Koi parwaah nahi.
Nice. I have like last few questions, okay? Which I'm actually right now, I'm mesmerized by the magnitude of the group. Ki har cheez mein kya 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 kya. And if you look at jo humne start mein baat kari thi Chanakya wali, ki corner se khao fir center mein jao, technically Adani ne wahi kiya, ki wo port se jahan enter exit se airplane se
ek cheez aur bolna. दुनिया में कोई भी देश देखो, जिस देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है उसके पास बहुत पोर्ट्स है. नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड वेल्थ जेनरेशन गो हैंड इन हैंड. अगर देश को बढ़ना है इट नीड्स मोर पोर्ट्स, क्योंकि आपको ज्यादा इंपोर्ट करना है ज्यादा एक्सपोर्ट करना है. अगर एक्सपोर्ट नहीं रहेगा तो एक्सपोर्ट करोगे कैसे, करोगे इंपोर्ट कैसे करोगे. इंडिया नीड्स पोर्ट्स एंड अडानी इज बिल्डिंग देम लेफ्ट राइट सेंटर. आपका आपके पोर्ट है आप नहीं संभाल सकते हो, मुझे बेचो मैं कर लूंगा. वो देश का नस जानता है क्या चीज लाना है क्या चीज बेचना है, वहां अडानी करता है.
उसके मेन लोग कौन है
उसके पास? हर एक बिजनेस में एक फैमिली में मैनेजमेंट है और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है,
क्योंकि बिना सही लोगों के पॉसिबल नहीं है.
इसलिए मैंने पूरा लिस्ट दिया हूं उस अपनी किताब में.
तो टॉप टू या तीन, टॉप टू या थ्री उसके लोग कौन है जो यू फील कि दे कैन बी यू नो राइट हैंड लेफ्ट हैंड आई डोंट नो हाउ डू यू कॉल इट मेन पर्सन. जैसे अंबानी ग्रुप के साथ यूजुअली लिंक होता है मनोज मोदी की,
नहीं उसके पास एक आदमी नहीं है. खाली एक चीज है, विदेश में जो कुछ संभालना है विनोद अडानी संभालता है.
अच्छा,
पर जो देश के कारोबार है
गौतम अडानी खुद.
गौतम अडानी खाली ऊपर से निगरानी देता है, डेलीगेट करता है अथॉरिटी. हर एक बिजनेस का अलग अलग मैनेजर है, फैमिली वाला भी उधर ही है, प्रोफेशनल मैनेजर भी उधर ही है. तो फैमिली मैनेजर, फैमिली वाला अलग रिपोर्ट करता है उसको, प्रोफेशनल मैनेजर अलग करता है, तो दोनों नंबर्स देख रहा है उसको मालूम है कहाँ गड़बड़, कुछ गड़बड़ है या नहीं मालूम पड़ता है.
तो ये दोनों का रीजन क्या है? बस ट्रस्ट, फैमिली रखने का और प्रोफेशनल रखने का.
देखो उसके पास परिवार है, परिवार को भी साथ में रखना है.
हाँ,
एक चीज है वेस्टर्न कल्चर के, हम वेस्टर्न कल्चर के जैसे नहीं है. वेस्टर्न कल्चर में खाली प्रोफेशनल मैनेजर चलते हैं. आप ईस्ट में देखो फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बिजनेस ग्रोथ इन ईस्ट. जापान देखो, कोरिया देखो, इंडिया देखो, पाकिस्तान देखो, चाइना देखो, फैमिली इज इंपॉर्टेंट
वेरी. इनफैक्ट लार्ज ग्रुप्स आर फैमिली ओन्ड.
और फैमिली क्या है कि कुछ गलती हो गई, मैं डिनर पर बात करूंगा भाई से, बहन से,
सॉल्व
चाचा से, किसी से, हर एक सलाह देता है. और जिसके पास काबिलता है उस सलाह में मालूम है किसको किसकी बात सुनना चाहिए किसकी बात नहीं सुनना चाहिए. But Gautam delegates everything. He doesn't go into data management.
Never.
Which is why it's a 50-50 relationship. आप से मालूम. मैं खाली नंबर देखूंगा. शाम को उसके पास नंबर आते हैं देखता है. ठीक है. चलो.
कुछ.
कुछ नंबर में गड़बड़ हुआ. बुलाएगा. क्या हुआ इसके लिए? ये आज कैसे कर गया? तो एक किस्सा सब. फैमिली वाला बुलाएगा. एक किस्सा प्रोफेशनल बनाएगा. उसको मालूम पड़ेगा कहाँ सच है कहाँ झूठ है कहाँ प्रॉब्लम है.
ओके लास्ट क्वेश्चन आई हैव ऑन गौतम अडानी, कि जितना ज्यादा पढ़ते जाओ ना उनके बारे में तो पता चलता है कि लोग काफी डरते हैं. डू यू फील इट्स ट्रू? उनसे काफी लोग डरते हैं, लाइक उनके बारे में ज्यादा लोग लिखना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते.
देखो मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कह सकता. मैं 18 साल से उनके बारे में लिख रहा हूँ. आज से मेरा कभी पंगा नहीं हुआ है. हर एक बिजनेस ग्रुप में कभी डिसीशन है जो अच्छे नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगते. जैसे मैंने किताब में लिखा, उसने सोलर पैनल में गया है पर लाद सोलर फार्म. इस देश में अगर सोलर सक्सीड होना है एंड नेशनल प्रायोरिटीज से मिलना है, रूफटॉप सोलर इज आंसर. और रूफटॉप सोलर का कारण एक है, उसके पीछे भी एक कहानी है. सन 2000 में वो जर्मनी में ग्रीन पार्टी केम टू पावर और हरमन शेयर नाम का एक आदमी एनर्जी मिनिस्टर बन गया. इस बैकग्राउंड वाज ही वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हिमसेल्फ, तो बिजली का थोड़ा जानता था. लाइक मोस्ट जर्मन्स पढ़ा लिखा था, रिसर्च किया अपना. और उसे लगा कि एक तो वो ग्रीन पार्टी में था, उसे लगा कि अगर ग्रीन को, अगर सोलर को 1% पैसा मिला जो सब्सिडीज इंसेंटिव्स आपने कोयला और ऑयल को दिए हैं, सोलर ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड टू मेक सोलर सक्सीड. उसने एक नई तरकीब चालू की. ही टोल्ड इन जर्मनी, जिसके पास भी घर है जो नॉर्थ साउथ फेसिंग है, उसके ऊपर हम सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्थ साउथ में ईस्ट का भी सन लेता है, वेस्ट का भी सन लेता है. उसने देखा रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों के पास इच्छा नहीं थी, कौन तकलीफ लेगा सोलर पैनल लगाने के लिए, और जर्मनी में हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो रिस्पॉन्स नहीं था। तो उसने उसी समय एक महीने में पॉलिसी चेंज किया, बोला वी विल इंस्टॉल इट, यू डोंट इंस्टॉल इट,
हम आके करके जाएंगे,
आपको पैसे नहीं देना, सोलर पैनल अपना, इंस्टॉलेशन अपना,
जगह देनी।
तो थोड़े लोग आने लगे, तो उसी महीने में उसने एक और पॉलिसी ऐड की, बोला देखो जो भी सोलर आप जनरेट करोगे आप अपने आप यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और दिन के टाइम पर जब हस्बैंड वाइफ दोनों काम पर जाते हैं, घर में कोई नहीं है, आपके पास को सोलर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बेचने में पैसे दे दूंगा आपको, तो एक उसके खर्चे कम हो गए, दूसरे बस पैसे आने लगे। तो बहुत लोगों ने हाँ कहा। अभी ये सब काम करने के लिए उसको लोग चाहिए थे जो इंस्टॉल कर सके, मेंटेन कर सके, और मेरे घर से जो छोटा मोटा पावर आता है वो लेकर बैटरी में जमा कर सके, और बैटरी में से क्लीन पावर ग्रिड में दे सके। तो उसके लिए मुझे इंसेंटिव दिया गया 20 सेंट्स पर यूनिट फॉर 20 इयर्स।
ओके,
अब 20 सेंट्स का मतलब है उन दिनों जो सरकारी पावर जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से आता था वो 2 सेंट का, नहीं 4 सेंट का रहता था, तो 4 सेंट के बदले उसको 20 सेंट दिया कि लोग
ज्यादा ज्यादा इंस्टॉल करें, ज्यादा पैसे।
एज अ रिजल्ट जर्मनीज सोलर पावर कैपेसिटीज का स्टार्टेड इंक्रीजिंग डे बाय डे बाय डे। और कंडीशन ये था जो पहले आएगा उसको 20 साल के लिए 20 सेंट दिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर जो आएगा उसको 19 सेंट जाएगा, नेक्स्ट ईयर जाएगा कम दोगे
हर साल कम हो जाएगा।
तो हर साल एज कैपेसिटी बढ़ती है तो इतना प्रेशर नहीं रहता है, और दूसरे जो कंपोनेंट्स है वो सस्ते मिल रहे क्योंकि आपके मार्केट वॉल्यूम्स आ रहे हैं। जर्मनी में 8 साल 2008 स्टडी वॉज डन, एंड हरबन शेख का इंटरव्यू थे, अब यूट्यूब में मिलेगा आपको, जो कह रहा है कि मैं 8 साल में मालूम पड़ा कि सोलर पावर इज एम्प्लॉइंग मोर पीपल देन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अभी
इन जर्मनी।
तो मैं 2010 से सरकार से दरखास्त करता हूं कि भाई आपका पॉलिसी गलत है, जर्मनी के पास कम धूप है, के पास कम लोग हैं, फिर भी इट एम्प्लॉयज मोर पीपल इन सोलर। इस देश में हमारे पास ज्यादा लोग हैं, ज्यादा धूप है, देश बड़ा है, आप इधर सोलर क्यों नहीं चालू करते, सोलर रूफटॉप क्यों चालू नहीं करते, बेनिफिट है क्योंकि ऊपर सोलर पैनल है, नीचे कंज्यूमर है, तो डिस्टेंस कम है, तो लॉसेस नहीं होते, चोरी नहीं होती है। सरकार उसके तैयार नहीं थी क्योंकि सरकार का खुद का स्वार्थ है ग्रिड पावर में, एक फार्मर्स को खुशामद करने के लिए आपको सस्ते में पार देंगे, एक बार सोलर लग गया तो सस्ते में क्या देगा मुझे, मेरे पास सब ऊपर से आ रहा है एक बार सोलर लग गया तो मुझे सब्सिडी की जरूरत नहीं है, तो हाँ। सरकार का जो अंकुश है वोटर्स पर वो चला जाता है। तो सरकार पिछले 10 साल से रूफटॉप सोलर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो मैंने किताब में लिखा है गौतम शुड हैव बीन अ ट्रेंड सेटर, ही शुड हैव गॉन टू रूफटॉप सोलर। एज इट हैपेंस गौतम अंडरस्टूड दिस एंड इन नॉर्थ ईस्ट इज पुटिंग अप रूफटॉप सोलर एवरीवेयर। उसके पीछे भी एक किस्सा है अगर सुनना चाहोगे।
सुनाओ।
मैं 4 से 5 साल पहले त्रिपुरा में गया, अपने वो मुख्यमंत्री से मिला, बिप्लब कुमार देव थे। अब उन्होंने बताया कि 2016 में सरकार, सेंट्रल सरकार ने बोला हर एक हाउस को, हर एक घर को इलेक्ट्रिसिटी पहुंच, बिजली पहुंचनी चाहिए। तो 2016 उन्होंने सर्वे किया कितने घरों में हम बिजली पहुंचा सकते हैं। जब पेपर वर्क हुआ, आया पे कागज, तो उनको मालूम पड़ा कि सभी घर में बिजली पहुंचा सकते हैं, 50,000 घर में नहीं पहुंची है। तो बोला क्यों? मैं सर पहाड़ पे है सर, वहां वायर पहुंचने में कम से कम 2-3 साल लगेंगे। तो बोला नहीं ये नहीं चलेगा, मैं इलेक्शन जीतने भाई। बोले नहीं सर, वो पहाड़ पर खोदना, केबल्स डालना मुश्किल काम है, 5-6 साल लगेंगे। तो उपाय क्या है? तो सभी इंजीनियर बोला रूफटॉप सोलर उपाय, पर सरकार के पास पैसे रूफटॉप सोलर के नहीं थे, सेंट्रल केंद्र सरकार की। तो बिप्लब कुमार आर के सिंह को मिलने गए, ही वॉज अ यूनियन पावर मिनिस्टर। आर के सिंह से बोले मुझे सोलर पावर लगाना है हिल्स पर। बोले उसके बजट नहीं है। तो बोला देखिए सिंह साहब, आपको इलेक्शन नहीं जीतना, मुझे इलेक्शन जीतना है। और मैंने लिखा हूं आर्टिकल में, मनी कंट्रोल में लिखा हूं।
ओके।
तो आपको इलेक्शन जीतना, मुझे ही जीतना है। मुझे सोलर चाहिए, बोला पर हमारा बजट नहीं है, मतलब स्टेट खर्चा करेगी। तो आज किसी ने बोला अच्छा तो मुझे एफिडेविट दो कि स्टेट खर्चा करेगी, मुझे पैसे नहीं दे रहे। तो उसने चीफ सेक्रेटरी बोला चिट्ठी दो। उसी शाम का एफिडेविट आ गया और बिप्लव कुमार देव गए, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का आदेश दिए, 50,000 रूफटॉप सोलर लग गए। और उसमें एक चीज मालूम पड़ा कि अगर उसने ग्रिड लाइन डाला था हिल पर तो हर एक घर का कॉस्ट 5 लाख रहता था, सोलर पैक का कॉस्ट 50,000 रहा। और दूसरी चीज थी, एक बार लग गया तो अगले साल से बिल नहीं रहे, सब्सिडी नहीं रही, कोई खर्चा नहीं रहा, कोई और जो किसान था, जो आदमी जो पहाड़ी पे रहता था वो भी खुश, लाइन में लाइन कट करते, जब उसका पैसे नहीं मिलते थे तो पहले लाइन देता नहीं था, अभी ना लाइनमैन रहा, न कट ऑफ रहे, ना पार कट रहा, लोड शेडिंग नहीं रहा, खुश, उसका लाइट और फैन 24 चल सकता है क्योंकि बैटरी लगा दिया, रात बीच चलती है। एक बार वो लग गया तो हर एक जो पहाड़ी पर रहता था नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा, मेघालय, सब जगह सभी ने बोले ने हमें भी सोलर चाहिए। सरकार की हिल गई, सरकार के पास बजट नहीं था और उसका स्वार्थ है ग्रिड पावर में। तो अडानी ने बोला मैं लगाऊंगा सोलर। तो उसने अपना एक अलग एजेंसी बना दिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सोलर लगा रहा है। तो बदलाव आ रहा है सरकार के बावजूद।
ओके, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट व्हिच वी वर इनिशियली टॉकिंग एंड यू सेड इंडिया, चाइना एंड रशिया टुगेदर आर गोना चेंज द वर्ल्ड। ओके, व्हाई, लाइक इज इट, व्हाई डू यू फील सो?
इन 2009 माय एनालिसिस वाज बेस्ड ऑन नंबर्स, where we realized that India was actually the most blessed country in terms of water.
Theek hai.
9% of its land is underwater. Bangladesh, in spite of it being called a riverine territory, has only 4% underwater. Maximum 5%. Pakistan is 3% and China is 2%.
Okay.
China is 3 times India's size. But as a percentage, water is only 2%. Second, when you look at water, you realize that water in primitive societies, much of the water goes for agriculture.
Yeah.
In developed societies, you learn how to prune water usage for agriculture and divert it to industry, and 40 to 50% goes to industry. And China, with less water and was getting industrialized, it would be very, very short of water supply.
Yeah.
Not surprisingly, China learned every trick that Israel had today. Today, it is the most water-efficient country in the world.
China, today?
It recycles
even better water than Israel.
It recycles water 3 times.
Wow.
Okay. Point three. The only country which has more water than India and even the US in percentage terms, okay, is Russia, which has 12% of its land under water. And its land is 3 times the size of China, 3 times the size of USA, 9 times the size of India. It is the largest freshwater reserves in the world. So China's 3 choices. China attacks India, takes the Brahmaputra water away and tries to get water away. That would be dangerous because China loses a very valuable market and a partner.
Yeah.
2. China decides to stay put where it is and doesn't have any ambitions of growth, which is impossible. 3, it arrives at a deal with Russia and gets water from Russia.
But what, like, what is India's role in this then?
Now, Russia, problem is that it does not have enough people. It has the lowest density of people in the world. I think it is only about 9 people per square kilometer.
Okay.
India's 300. Bangladesh is 1,500 per square kilometer.
Okay. Wow.
And in spite of this density of population, Bangladesh has a better per capita income than India.
Exactly. I was going to come to that.
Which means Bangladesh is doing something that India has not learned how to do. And I've got reasons for that. I've got theories about that. Let's leave for that. We knew that Russia is the largest reservoir of oil, of gold, of other rare earth minerals. But it doesn't have the capital to go in for mining, large-scale mining. And mining has 2 methods. One is capital intensive, the second is labor intensive. Talk to Russia, just like we run an oil exploration, where OVL is a partner with Russia, an equity partner, with a production sharing basis. Do that in mining. You get labor, not so sophisticated labor. They can build camps the way Saudi Arabia builds camps, where they don't mix up with the population. They don't pollute the population. They don't become citizens of the country. And after the project is over, they're sent back to India. And you can have a churn. That will solve India's population problem. That will make Russia richer. They will not trust China, because China will go into Russia. Their next door neighbors, they'll squat there and then claim that property as their own.
Yeah.
Which is why India, China and Russia need to work together.
One has population, one has land.
One has water.
Water.
And one has markets. And both have, two have markets.
Two have, yeah.
Together, we account for about 30% of the global population and 40% of purchasing power.
Do you feel like...
And the Ukraine war has got all the three together.
Yeah.
Which is why America is shitting bricks now.
So you feel now, gone are the days when the world was ruled by West? India's going to be three of
us... If India doesn't goof up. And Modi's capable of goofing up with his arrogance.
Okay. So what do you think? Like, what's stopping India ko world power banne se rok kya raha
hai? Education.
Okay, go deeper on that. Education, why do you mean, man? What?
How? Well, if you have a population without education, where will it go? Where's upward mobility? Are you going to use them for rights? A population needs education to climb. And our schools are rotten. Look at Pratham. The largest NGO in India is Pratham. Look at their reports. 50% of India, of 10th, 8th standard boys can't read the textbooks of 2nd standard boys.
So is there a solution to it?
Yes.
Just educate more. Better schooling system.
You've got a finance ministry. Remove all tax exemptions for the trust which run schools unless you have a output evaluation every year or every 6 months. Get an external team to evaluate the students. I got 50% last year. I'm getting 55 now.
But we don't see that happening anytime soon.
Politically, he can't afford it. Schools of all the Brahmins.
Interesting take. Let's not go there. No, I hear you. I think you have a very fair point. But don't you think like people in power also knows that India needs education to grow?
Yeah.
Aren't they doing something about it?
The trouble is we give them education, they'll ask questions.
Sorry?
If you give them education, they'll ask questions.
And you don't want anyone to ask you questions?
As it is, telecommunications has upset the social equation. Because any rape in a village goes on social media straight away.
Yeah.
It has upset equations. 50% of all the rapists are politicians themselves and are Hindu politicians, not a single Muslim politician.
Well, is this stat true? Like you have
check out the rates.
Wow. And do you think like...
Which godmen have been caught for rapes? I rest my case.
Wow, I have to go check before I comment anything. But no, you said ki India mein business karna bahut difficult hai. It's very difficult to do business in India. So, uska reason ye hai ki politics or politicians don't want enough awareness or education around the country so that people can ask questions. Ki kya reason hai ki India mein difficult hai?
The first reason why doing business in India is terrible
is
because we've created a perfect system where the courts do not function.
Okay.
First, we allow frivolous cases to come in. Two, we make sure that 30% of the judges' seats are not filled. The allocated seats for judges is itself 50% shorter than what it should be. So you're talking about a 70% reduction non-availability of judges. If you don't have a pileup of cases, now the beauty of a pileup of cases is the government gets said, ye urgent hai, isko fast forward karo. Ye chhod do. The biggest privilege a man gets in India is the ability to postpone cases. Because then, power lies in the hands of the oppressor. And the loser is the victim.
So that is reason number one.
Primary reason.
Because there's no fair...
And in my book, I've given a table which shows how many fictitious cases are filed against the likes of Adani or Tata's or even the government of India. Second, the government itself is a compulsive litigant. It floods the courts with cases which should not have been filed at all.
And why would they do so?
The inspector tells you, mujhe itna paisa nahi, main case lagaunga. In this office, the inspector came. I didn't know that I had to pay him a bribe when I started my own company. And the next day I found there's a court notice saying, come to the Kurla court. So I had to hire a lawyer. I had to pay the lawyer who paid 5,000 as cash.
I've heard this problem from many people now.
Yeah. Shops and establishments, the largest revenue generator. Municipal corporations, the second largest revenue generator. All bribes. The government floods the cases, courts with cases, so that they can extort money.
Okay, it's difficult to do business here, okay? And I get it. And because of there's so many reasons. But there are a few leaders who just gotten away and they've gotten their way up from poverty to where they are
today. They knew how to manage the system. If you're clean, if you're whistle clean, you won't be allowed to go far. Someone has to tell you how to manage the system.
You learn by yourself or you get...
Both.
तो मैं एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगा कि हर स्टोरी में अगर हीरो होता है तो विलन भी होता है राइट तो अदानी की स्टोरी में विलन क्या है कहीं पे लॉस हुआ कहीं पे कुछ धोखा हुआ कहीं पे कुछ ऐसा हुआ कि जहां पे
देखो, दो तीन बार
गलत चीज हो गई
जहां गलत होता है उस आदमी को सीधा निकाल देता है
अच्छा कुछ धोखा हुआ कहीं कुछ ऐसा हुआ कि जहां अदानी को लगा ऑलमोस्ट अब आई ब्लू इट
दो बार हुआ है एक जब पोर्ट बन रहा था तो एक्सपेंडिचर ज्यादा आया इनकम कम हो गया तो छह महीने के लिए उसके पैसे थे सैलरीज देने के तो हाई रेट पर इंटरेस्ट बोरो करके सैलरी दिया पर उसको मान लिया था वो बचेगा नहीं बचेगा एक वो रिस्क था दूसरा ऑस्ट्रेलिया में गया था ऑस्ट्रेलिया में गया थोड़ा तीन साल में लग जाएगा प्लान फिर वो एजिटेशन हुआ किस तरीके से स्ट्रैटेजी चार सरकार बदली तीन कोर्ट जजमेंट बदले उसके बावजूद दस साल के बाद उसने चल गया उस समय उसे लगा कि मेरे पूरे पैसे दांत डूबने वाले हैं दो जगह साथ साथ में दो और जगह हुई थी जहां बिजनेस के अलावा एक बार 91 में उसे किडनैप किया गया था और फैमिली को वाल नहीं थे वो जिंदा रहेगा या नहीं रैंसम दिया बचा दिए उसके बाद गौतम अडानी के पास सिक्योरिटी हमेशा रहता है पर सिक्योरिटी दिखाई नहीं देता है
अच्छा
अपने मंत्रियों के जैसे नहीं है सिक्योरिटी छुपा रहता है
बट किडनैप
निगरानी रहता है
तो किडनैपिंग स्टोरी क्या था
किसी ने किडनैप किया
ओके बस रैंसम के लिए
जब वो क्लब से निकलकर घर जा रहा था तो उसके कर्नावटी क्लब की तरफ जा रहा था किसने किडनैप किया बाद में रैंसम दिए बचकर निकला वो और बाद में जब कोर्ट में मामला आया जो दो आदमी थे जिस पर शक था वो पकड़े गए पर जब कोर्ट में मामला आया तो गौतम अडानी टेस्टिफाई करने के लिए मैं मंजूर नहीं हुए सोना सके हुआ क्या वापस भड़का गया क्या तो जज ने उसको फ्री कर दिया गौतम खुश वो खुश और दूसरा टाइम वो आया जब ताज में था
2611
वो अटक गया उधर
2611 में तो शायद रात भर उधर भी थे
रात भर उधर थे अगले सवेरे निकले पर वहां भी टेंशन नहीं था किसे फोन किया बोला रिपोर्ट चाहिए टेररिस्ट क्या कर रहे हैं मैं आपको दे दूंगा रिपोर्ट उस मास्क का बता रहा था अपने गुजराती जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को
तो डर क्यों नहीं लगा टेंशन नहीं होता
टेंशन था पर टेंशन दिखाता था तो और दूसरे को घबरा जाते थे तो कभी दिखाता नहीं है उस पर क्या बीत रही है किसी को मालूम नहीं पर उसमें कॉन्फिडेंस बहुत है
बहुत
और जब भी रिस्क लेता है उसके पास एक रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है अगर ये नहीं चला तो मैं क्या करूं
चेस्ट जैसे तो कुछ ऐसा है कि जो आपको लगता है आपने इतना स्टडी किया उनको कि गौतम अदानी को अगर कोई या तो डाउनफॉल आ सकते हैं लॉस हो सकता है तो इसी रीजन से हो सकता है या खुद के कोई एटीट्यूड की वजह से हो सकता है
नहीं देखो एक बार
जैसे बोलते हैं कि इस इंसान को सिर्फ यही खत्म कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता टाइप कुछ है ऐसा
मुझे दिखाई नहीं दिया पर एक चीज कह सकता हूँ सितवे म्यांमार में वो पोर्ट बना रहा था सितवे में पोर्ट बना रहा था और ऑस्ट्रेलिया में झगड़ा चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया जो कैंपेनर्स थे उन्होंने बोले कि अदानी सपोर्टिंग अ मिलिट्री रेजिम इन म्यांमार उसको पैसे नहीं देना है तो एक बैंक ने पैसा बंद कर दिया म्यांमार के लिए गौतम भाई घबरा गए बोला अगर ये आग फैलेगी तो ऑस्ट्रेलिया के भी फंड्स बंद हो जाएंगे। सीधा उसी समय सेतु को छोड़ दिया और कोई अजनबी आदमी को दे दिया। मुझे लगता है अजनबी आदमी बेनामी आदमी है, शायद 5 साल के बाद अडानी की कंपनी हो जाएगी। पर वो दे देता है, रिस्क नहीं लेता है। एक रिस्क से दूसरा रिस्क आ जाएगा, नहीं कट करता है
कॉन्ट्रोवर्सी से दूर।
कोल स्कैम में ही इज द लार्जेस्ट कोल ट्रेडर, एक भी कोल स्कैम उसका नहीं है। और पिछले 3 साल से सोलर पार में उसका सब खर्चा हो रहा है। एक एक्सेप्शन है, जहां भी थर्मल प्लांट है जो बिक्री हो रही है नीलामी के कारण, खरीद लेता है क्योंकि उसको मालूम है नीलामी में मुझे कम खर्चे में मिलेगा, मेरा कैपिटल कॉस्ट कम रहेगा तो मेरा रिटर्न ज्यादा होगा। और प्लांट तो है ही, मैं नया प्लांट नहीं लगा रहा हूं, प्लांट तो इंडिया में है, उस देश का कैपिटल का मैं बचा सकता हूं तो बहुत अच्छा, और कम खर्चे में बचा सकता हूं तो बहुत अच्छा।
नाइस। सो ओवरऑल हर स्ट्रेटजी में बस मेरा पैसा बचना चाहिए
और पैसे बनने चाहिए,
पैसे बनने चाहिए और कुछ दिमाग नहीं लगाना
और सरकार के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए।
नाइस। तो ये आई थिंक ये पूरी स्टोरी में ये स्टैंड आउट करती है चीज, कि जो भी काम करना है वो ऐसे करना है कि नेशनल इंटरेस्ट में हो, नेशनल प्रायोरिटी का हो और तुम्हारा इंसेंटिव अलाइन हो, वो दोनों अलाइन हो।
और कॉस्ट पे निगरानी रखनी चाहिए। डोंट लुक एट द मार्केट, लुक एट द कॉस्ट। आप कॉस्ट संभाल सकते हो तो सब कुछ संभाल सकते हो।
नाइस। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस।
माय प्लेजर।
आई होप कि बुक में और डिटेल में लिखा होगा।
और भी डिटेल्स हैं।
और डिटेल्स होगी, और जिसको भी ये एंटायर कॉन्वर्सेशन जिसको पसंद आई और वो लोग जाके डेफिनेटली बुक देखेंगे ताकि और डिटेल में सुन पाए और समझ पाए कि अदानी ने इतना बड़ा अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कैसे किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस।
इट्स अ प्लेजर।
थैंक यू। यू आर अ डिलाइटफुल पर्सन टू टॉक टू, जस्ट जेन्युइनली टेलिंग यू। If with all due respect, अगर if I have the liberty, मैं आपके साथ फिर episodes करना चाहता हूँ दूसरे topics
पे। Anytime.
Thank you so much for watching this episode till the end. अगर ऐसी stories और जाननी है तो please comment में मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन सा next businessman उसकी story जाननी है, zero से लेके end तक जिस तरीके से ये story हमने बताई। और अगर ये नहीं अच्छा लगा हो तो हमें वो भी बताओ कि ये type के episode हमें नहीं करने चाहिए, हमें stick रहना चाहिए हमारे genre पे जो कि है सिर्फ entrepreneurs को लाना। अगर आप चाहते हो कि हम एक्सपेरिमेंट करें और ऐसा काम करते जाएं, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसी कॉन्वर्जेशन जितनी ज़्यादा देश में बढ़ेगी उतनी जल्दी हमारा देश आगे बढ़ेगा। एंड आई रियली वॉन्ट दैट वी ऑल बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट।